तो कल चौथे स्कंद के ध्रुव महाराज के प्रसंग के पश्चात प्रतु महाराज के आविर्भाव का प्रसंग हम देखते हैं। ध्रुव महाराज के वंशजों में एक थे अंग, और अंग के एक बड़े क्रूर पुत्र हुए जिनका नाम था वेण। और वेण ने इतने बीभत्स रूप से समस्त नागरिकों की हत्या करना आरंभ किया, तो उससे परेशान होकर सारे ब्राह्मणों ने वेण को अभिशाप दे दिया और वेण की हत्या कर दी। और उसके परिणाम स्वरूप वेण का मृत शव वहीं पड़ा था। तब सब ब्राह्मणों ने मिलके संकेत किया कि वेण के इस मृत शव को मंथन किया जाए, और उसके मंथन से भगवान के ही अवतार पृथु महाराज अपनी अर्धांगिनी अर्ची के साथ प्रकट हुई। तो पृथु महाराज के आविर्भाव के तुरंत पश्चात जितने वहां ब्राह्मण थे सब पृथु महाराज की स्तुतियां करने लगे। पृथु महाराज उनके स्तुतियों को और अपने ही गुणों को सुनकर उत्तर देते हैं कि जब उन गुणों को मैं प्रदर्शित करूंगा तब मेरी स्तुति कीजिए, और समय से पूर्व स्तुति करना अनुचित है। तो पृथु महाराज और अर्ची एक आदर्श राजा और रानी का रूप निभा रहे थे, और तब पृथु महाराज के पास नागरिक आए और कहने लगे कि पृथ्वी देवी अपने अलग-अलग बीजों को अपने पास कुक्षी में दबा के रखी है और वो प्रकट नहीं कर रही। तो पृथु महाराज बड़े क्रोधित हुए, और पृथु महाराज ने क्रोधावेश में आकर धरती माता को ये चेतावनी दी, और पृथ्वी देवी उनसे घबरा कर उनके समक्ष प्रकट होकर कहने लगी कि जन सामान्य इन बीजों का दुरुपयोग कर रहा है। जो भी अन्न पोषण इत्यादि पाने के पश्चात हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि भगवान का भजन करे, सेवा करे, लेकिन आपसे ही प्राप्त धन धान्य को प्राप्त कर ये सभी लोग आपका विरोध कर रहे हैं, इसलिए आपकी सेवा में मैंने इनको दबा के रखा है। लेकिन पृथु महाराज ने उनको आदेश किया कि जो कुछ न्याय करना होगा वो मेरा उत्तरदायित्व है, आपका कर्तव्य है कि आप तुरंत इन सभी बीजों को प्रस्तुत कीजिए। तब उनके कहने पर पृथु महाराज पृथ्वी देवी के अंदर से विविध प्रकार के बीजों को प्रस्तुत किए, और उसका विस्तृत वर्णन आया है चौथे स्कंद में कि हर जीव का अपना एक दूध होता है या आवश्यकता होती है। तो कई बार लोगों को लगता है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने निजी कर्मानुसार कर्मठ प्रयासों के परिणामानुसार कर रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में ये प्रस्तावना दी गई है कि वास्तव में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान की ही अंतरंगा शक्ति जिसका नाम है इला या भूमि देवी जिसका प्रतिनिधित्व करती हैं उनके माध्यम से हो रहा है। तो इसलिए जब तिरुपति बालाजी का दर्शन करने आप जाओ तो वहां पर बालाजी के दो अंतरंगा पार्षद हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये मान के चले कि मैं अपने प्रयासों से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हूं, वो बहुत बड़े भ्रम में है। इसलिए यहां पर पृथु महाराज ने उत्तरदायित्व लिया कि जन सामान्य के समक्ष हर प्रकार की आवश्यकताएं भगवान को संतुष्ट करके पूर्ण की जा सकती हैं। वृंदावने कल्पद्रुमे सुवर्ण सदन, महायोग पीठ तहा रत्न संहासन। ताते वसी आचे सदा ब्रजेंद्र नंदन, श्री गोविंद नेम नाम साक्षात मदन। सहस्र सेवक करे अनुक्षण, सहस्र वदने सेवा न याय वर्णन। कविराज गोस्वामी बताते हैं कि वृंदावन में जब राधा गोविंद मंदिर में राधा गोविंद देव की सेवा पूजा हो रही है, तो इसका वर्णन किया गया है कि वास्तव में यह कल्पद्रुम है। तो जो भगवान की सेवा करने अर्च्य विग्रह और मंदिर की स्थापना करते हैं, वो अर्च्य विग्रह वास्तव में कल्पद्रुम या कल्पवृक्ष की भांति हो जाते हैं और सेवक की हर इच्छा पूर्ण करते हैं। सहस्र सहस्र सेवक उस समय सेवा कर रहे थे। सेवार अध्यक्ष श्री पंडित हरिदास, तार गुण सर्वे जगते प्रकाश, तारा यश गुण सर्वे जगते प्रकाश। सेवकों के अध्यक्ष थे श्री पंडित हरिदास, जो गोविंद देव की सेवा में लगे थे। उनका यश उनका गुण चारों दिशाओं में व्याप्त था, वो बड़े प्रसिद्ध थे। सुशील सहिष्णु शांत बदान्य गंभीर, मधुर वचन चेष्टा महाधीर। तो जब सेवक भगवान के सेवा में दिव्य वैष्णव गुणों को प्रदर्शित करते हैं, भगवान की भावनाओं और इच्छाओं के साथ उनके मानसिक रवैये में समन्वय होता है, तो भगवान अकस्मात ही स्वयमेव अपने हृदय के अंतःकरण से जीव और भक्त की हर इच्छा पूर्ण करते हैं। तो इसलिए गोविंद देव की सेवा हो रही थी और ये प्रचुर मात्रा में सेवा का एक मुख्य कारण था कि उनके सेवक बड़े ही दिव्य स्तर पर थे। और सुशील सहिष्णु शांत वदान्य और गंभीर थे, और उनके वचन बड़े मधुर थे, और उनके चेष्टा भी बहुत धीर था। इसलिए यहां पर पृथु महाराज कह रहे हैं पृथ्वी देवी को कि हां, मैं इस बात को मानता हूं कि हो सकता है जितने लोग पृथ्वी पर अभी हैं वो अपना दैवी उत्तरदायित्व तो नहीं निभा रहे, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि मेरे आदेशानुसार कार्य करें। समाज को अनुशासन बद्ध करना ये मेरा कर्तव्य बनता है। तत्पश्चात वर्णन आता है कि पृथु महाराज अलग अलग अश्वमेध यज्ञ करना संपन्न करते हैं। अब पृथु महाराज भगवान के पालन शक्ति के एक अंतरंगा पार्षद हैं, तो अपने पालन के और शासन के शक्ति को बढ़ाने के लिए अब वो अश्वमेध यज्ञ संपन्न करना आरंभ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक एक करके जब होने लगता है तो 99 अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न कर लेते हैं। अब केवल एक अश्वमेध यज्ञ बच जाता है। 100 अश्वमेध यज्ञ जो संपन्न करेगा उसे स्वर्गलोक में इंद्र का पद प्राप्त होगा। अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने कुछ ही क्षण रह गए थे और उन कुछ क्षणों के पश्चात पृथु महाराज को स्वर्ग का नेता या इंद्र का पद प्राप्त हो सकता था। तो इस बात को देखकर इंद्रदेव घबरा गए, उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। पदच्युत होने के भय से वो इस अश्वमेध यज्ञ में हस्ताक्षेप करने का विचार किए, योजना बनाए, और उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करके पृथु महाराज के अश्वमेध यज्ञ के लिए बांधे गए घोड़े को हस्तगत कर लिया। बलपूर्वक उन्होंने उनका अपहरण कर लिया और उसे लोप कर दिया। पृथु महाराज के पुत्र जब इसको देखे तो वो घबरा गए, क्रोधावेश में आकर इंद्रदेव का पीछा करने लगे। इंद्र ने अपना बचाव करने के लिए अपना वेश बदल डाला, साधु संत का वेश धारण कर लिया, अलग अलग कापालिकों का वेश धारण कर लिया, जितने अपधर्म का पालन करने वाले लोग हैं जो अपसंप्रदाय में हैं। ऐसे विविध प्रकार के अनाधिकृत संप्रदायों का पंथों का वेश धारण करने लगे इंद्रदेव। इसको देखकर, उनके साधु के वेश को देखकर पृथु महाराज के पुत्र ने उन पर आक्रमण नहीं किया, सोचा कि अनुचित होगा किसी साधु संत ब्राह्मण पर आक्रमण करना। उसको देखकर अत्रि ऋषि जोर जोर से उच्च स्वर में चिल्लाने लगे कि ये कोई साधु संत नहीं है, ये इंद्र ही है जिसने अपना वेश परिवर्तित किया है, छोड़ो मत, आक्रमण करो। लेकिन अत्रि ऋषि ने आक्रमण नहीं किया और इंद्र ने भी उस घोड़े को छोड़ दिया। समस्या का समाधान देखकर पृथु महाराज के पुत्र पुनः उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को लेके आए, बांध दिया, फिर इंद्र ने उसको चुरा लिया। इस तरह बार बार इंद्र उसको चुरा कर इस अश्वमेध यज्ञ के संपन्नता में विघ्न डालने का प्रयास कर रहे थे। तत्पश्चात पृथु महाराज स्वयं इसमें उतरे और उन्होंने इंद्रदेव को पीछा किया और अपने हाथ में बाण लगाकर उनको समाप्त करने ही वाले थे, और तब जाकर उनको रोक लिया गया। और सारे ब्राह्मणों ने मिलकर वहां पर यज्ञ करना आरंभ किया और कहा कि इस यज्ञ के माध्यम से हम इंद्र को भी इसके अंदर झुलसकर समाप्त कर देंगे। और इस प्रकार वो यज्ञ करने ही वाले थे, तभी वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी प्रकट होकर पृथु महाराज से निवेदन करने लगे कि आप इस प्रकार का कार्य मत कीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आदान प्रदान का विषय यहां हम देखते हैं कि जब इंद्र ने इस प्रकार ये कार्य किया तो ब्रह्मा जी आकर उनको रोकते हैं और ब्रह्मा जी आकर कहते हैं, नवध्यो भवताम इंद्रो यत यज्ञो भगवत तनु। आपका कर्तव्य बनता है कि आप इंद्र का विनाश मत कीजिए। गलती किसने की थी? इंद्र ने। अपराध किसका था? इंद्र का। लेकिन लेक्चर किसको मिला? पृथु को। यह है कृष्ण भक्ति आंदोलन। तो यह मत सोचिए कि जो गलती करेगा उसी को ही दंड मिलेगा या उसी को ही लोग सुधरने कहेंगे। भागवत में वर्णन आया है कि कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में जो आपके बाहर के सामाजिक नियम लागू नहीं होते, यहां पर कोई भिन्न नियम लागू होते हैं, उसको समझने के लिए भागवत समझना आवश्यक है। नियम के दृष्टिकोण से देखा जाए, न्याय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंद्र अपराधी थे, दंड इंद्र को मिलना चाहिए था, इंद्र को ही किसी प्रकार से फीडबैक मिलना चाहिए था। लेकिन ब्रह्मा जी आकर पृथु महाराज को पकड़े और पृथु महाराज को लेक्चर दे रहे हैं और कह रहे हैं, नवद्यो भवताम इंद्रो यद्यज्ञो भगवत तनुहु। देखिए, इंद्रदेव भगवान के शरीर स्वरूप हैं, वो भी अवतार हैं, और इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनका वध न करें। और इसलिए वो कहते हैं कि इंद्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, इंद्र बड़े शक्तिशाली और बहुत शक्ति प्राप्त अवतार हैं। और जब बहुत शक्तिशाली भक्त जब कोई गलती करे तो उसको सामान्य व्यक्ति की तरह दंड नहीं दिया जा सकता। इसलिए बहुत विचार करके, मननशील होकर, परिपक्व भाव के साथ उस अपराध का विश्लेषण कर उसके साथ प्रत्युत्तर देना होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना विचार कीजिए मन में कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करने की अभिलाषा करता है, लेकिन ब्रह्मा जी पृथु महाराज के हृदय को टटोलते हुए कह रहे हैं, आप अपने हृदय के अंतःकरण में ये प्रश्न पूछिए और इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं पृथु महाराज को, मेरा आपसे प्रश्न है कि आपको जीवन में क्या चाहिए? आपको इंद्रदेव का स्वर्ग के सिंहासन का पद चाहिए? आपको स्वर्ग के सिंहासन पर बैठना है या भगवान श्री कृष्ण के हृदय के आसन पर बैठना है? तो इसके ऊपर विचार करना आवश्यक है। अगर आपको स्वर्ग के सिंहासन पर बैठना है, लड़ो, ईंट का जवाब पत्थर से, युद्ध करते रहो, बाण चलाते रहो, जितना युद्ध करोगे उतना विजय प्राप्त होगा और उतना ऊंचा पद प्राप्त होगा। लेकिन मुख्य प्रश्न है कि आपको स्वर्ग का पद चाहिए या गोलोकपति कृष्ण के हृदय के भीतर के आसन पर विराजमान होना है। अगर स्वर्ग का पद चाहिए तो युद्ध करते चले जाओ, कलह करते चले जाओ, इस सामाजिक न्याय के अनुसार आप प्रतिकार करो। लेकिन अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के हृदय के आसन पर बैठना है तो फिर भिन्न नियम लागू होंगे और उसमें आपको इंद्र के साथ समझौता करना होगा और उसको क्षमा करना होगा। तो इसलिए यहां पर कहते हैं, पृथो कीर्ते पृथोर भूयात तरहि एकोन शतक्रतु अलम ते क्रतुभिर स्वष्टै यद भवान मोक्ष धर्मकृत। तो कहते हैं, देखिए, पृथु कीर्ते पृथुर भूयात, आपका नाम पृथु है, आपके मन में 100 अश्वमेध यज्ञ करने की अभिलाषा है, लेकिन वो 100 अश्वमेध यज्ञ करके आपकी इच्छा क्या थी? स्वर्ग के पति बनकर। स्वर्ग का पति क्यों बनना? जिससे आपका इन्फ्लुएंस बढ़े, आपकी शक्ति बढ़े, आपकी समृद्धि में वर्धन हो, आप यशस्वी हो जाएं। तो अगर आपको केवल ऐश्वर्य, यश और सत्ता की ही प्राप्ति चाहिए तो मैं आपको एक दूसरा उपाय दूंगा जिसके माध्यम से बिना 100 अश्वमेध यज्ञ किए, बिना इंद्रदेव के साथ कलह को कायम रखे, उसका हनन किए, आप शांतिपूर्ण ढंग से मेरे आशीर्वाद से वही यश ऐश्वर्य प्राप्त कर लोगे। तो इसलिए मैं आपको उस मार्ग पर लेके चलना चाहता हूं। तो प्रथोर कीर्ति प्रथोर भूया तरही एकोन शतक्रतु, आप 100 से कम एक यज्ञ करके वही ऐश्वर्य और यश प्राप्त कर लोगे। लेकिन साथ साथ उस मार्ग को पालन करके 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे, स्वर्ग का राजा बनोगे। 99 अश्वमेध यज्ञ करोगे, भगवान श्री कृष्ण के हृदय के साम्राज्य का राजा बनोगे और साथ साथ ऐश्वर्य और यश भी सनातन काल के लिए श्रीमद् भागवत के पन्नों में आपका निरंतर अंकित रहेगा। तो सोचो कहां आपको प्रवेश करना है, स्वर्ग में प्रवेश करना है कि भागवत के पन्नों में प्रवेश करना है? और भागवत कथा में फिर इंद्र को विलन घोषित किया जाएगा, आपको हीरो, क्या बनना है बोलो। तो इसलिए भागवत जो है एक अलग दृष्टिकोण से तत्वों को प्रस्तुत करता है और यहां इस बात को वर्णन किया जा रहा है कि ये अश्वमेध यज्ञ जिसमें अश्वों को आहुति चढ़ाई जा रही थी, लेकिन ब्रह्मा जी आकर पृथु महाराज को कह रहे हैं, यज्ञ के अंदर घोड़ों को बलि देना वो तो कोई भी सामान्य व्यक्ति बलिदान कर सकता है, लेकिन पृथु महाराज, मैं जगत के सामने सनातन काल के लिए सिद्ध करना चाहता हूं कि जो भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के हृदय के साम्राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं वो केवल सामान्य घोड़े नहीं लेकिन अपने हृदय के अंदर इच्छा और योजना रूपी घोड़ों को बलि दे सकते हैं। और अपनी इच्छाओं को और योजनाओं को बलि देना सबसे कठिन कार्य है। बाहर के घोड़े को बलिदान देना तो बहुत आसान है। जैसे आप में से कई लोग हमारे यहां पर एनिमल शेल्टर देखे होंगे, उसमें घोड़े भी हैं। उसमें से इन घोड़ों को क्यों लाया गया? क्योंकि वो रेस में काफी साल भागने के पश्चात उसके मालिक ही उनको मारना चाहते थे, बलिदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लाके यहां पर हमको दे दिया कि आप लोग इनको संभालो, आप लोग हरे कृष्ण वाले हो, आप लोग तो अहिंसा के लिए प्रसिद्ध हो, चाय कॉफी तक नहीं पीते, तो ये घोड़ा यहां सेफ रहेगा और आप लोगों के पास तो भजन करने से फुर्सत नहीं तो घोड़ा क्या चलाओगे, तो इसलिए घोड़ा भी सेफ रहेगा, कुछ टेंशन नहीं। तो इसलिए घोड़े का बलिदान देना, ये कह रहे हैं भले कोई सामान्य व्यक्ति कर ले लेकिन अपने इच्छाओं के, स्वप्नों के, विचारों के, योजनाओं का बलिदान करना बहुत कठिन है। और इसलिए जो सामान्य यज्ञ होता है जिसमें घी की आहुति देकर स्वाहा स्वाहा करते हैं और इदम नमम हम कहते हैं, वो एक प्रतीक है हमारे वास्तविक भावनाओं का कि हम ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन यहां पर पृथु महाराज से यह करवाया गया और इसलिए पृथु महाराज को यहां पर बहुत विशेष रूप से माना गया है। और यहां पर यह वर्णन आ रहा है कि इंद्र की सबसे बड़ी समस्या थी, इंद्र की इनसिक्योरिटी थी कि उनका, उनको लगता था मैं शतक रतु हूं। तो इनसिक्योरिटी कब होता है? जब हमारा आइडेंटिटी परिवर्तित होता है। वी एक्सपीरियंस इनसिक्योरिटी व्हेन द आइडेंटिटी स्टार्ट्स चेंजिंग। तो इंद्र को लग रहा था मैं शतक्रतु हूं, 100 यज्ञ करने वाला, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला, और अगर इंद्र ये कर लिए तो मेरा क्या होगा, तो मेरे अस्तित्व में प्रश्न चिन्ह उठेगा। इसलिए इंद्र ने विचार किया कि मैं प्रतिकार करूंगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी यहां पर पृथु महाराज को कह रहे हैं देखो आपको इस जगत के ऐसे चलायमान अपने आइडेंटिटी से बदलना है, आगे उठना है। और हमारा वास्तविक आइडेंटिटी है, अस्तित्व है, स्वरूप है, जीवर स्वरूपोय कृष्णेर नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि जब तक हम उस दासत्व को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। तो यदि सही महाप्रभुर न पाए कृपा धन, किबा राज्य किबा देह सब अकारण। प्रताप रुद्र महाराज कह रहे हैं कि जब तक मैं महाप्रभु का दास नहीं बनूंगा इस जगत का कोई भी ऐश्वर्य प्राप्त करके मैं क्या करूंगा। इसलिए ये दास बनना वास्तव में सबसे बड़ा पद है। तो ब्रह्मा जी आकर पृथु महाराज को एक उदाहरण बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस पृथु महाराज के पास जीवन में उस क्षण 2 प्रकार के चॉइस थे। एक राजनैतिक दृष्टि से उच्च पद प्राप्त करना और दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च पद प्राप्त करना। तो इसलिए राजनैतिक दृष्टि से उच्च पद प्राप्त करने का अगर आपको आइडिया चाहिए तो महाभारत पढ़िए। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च पद प्राप्त करने की युक्ति चाहिए तो भागवत पढ़िए। तो इसलिए सामाजिक राजनैतिक स्तर पर अलग अलग प्रकार के हमारे आदान प्रदान संभव हैं और आध्यात्मिक स्तर पर वो अलग हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत आरंभ में ही हर प्रकार के दूसरे तत्वों को और धर्मों को क्षण भर में परित्याग कर देता है। तो इसलिए यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अ कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्कड आउट बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी की कृपा से इंद्र और पृथ्वी महाराज दोनों के बीच शांति स्थापित की गई। इंद्र कौन है? भगवान के भक्त अवतार। पृथ्वी कौन है? भगवान के अवतार। अर्थात भागवत में वर्णन किया जा रहा है कि हां आप लोग आदर्श मार्ग को प्राप्त करने के प्रयास में हो, आदर्श गंतव्य वैकुंठ की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के इस मार्ग पर हो, लेकिन इस मार्ग के पग पग में बड़ी चुनौतियां हैं और बड़ी अनिश्चितताएं हैं और बहुत सी कमियां हैं। मार्ग हमारा आदर्श है, लक्ष्य हमारा आदर्श है, साध्य हमारा आदर्श है, इसका अर्थ यह नहीं कि साधना के समय हम डगमगाएंगे नहीं, साधना के समय हम फिसलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। अर्थात अगर पृथ्वी और इंद्र जैसे अवतारों के बीच मतभेद हो सकता है और वो अपने मार्ग पर डगमगा सकते हैं तो हम लोगों के क्या कहने। इसलिए कहा गया है, भूमौ स्खलित पादानाम भूमिरेवावलंबनम त्वयि जाता पराधानाम त्वमेव शरणम प्रभो। चलते चलते अगर व्यक्ति फिसल के गिर जाता है तो उठने के लिए किसका आश्रय लेगा? फिसला तो किसके कारण? पृथ्वी के कारण। उठेगा तो किसका आश्रय लेके? उसी पृथ्वी का आश्रय लेके। इसलिए भक्ति मार्ग पे चलते हुए अगर भक्तों के द्वारा कोई गलती हो गई तो पत्थर उठा के मार मार कर उनको कुचल नहीं देना है, लेकिन इस बात को समझना है कि ये मार्ग बड़ा पथरीला है, कठिन है, संघर्षों से पूर्ण है। बड़ी सहानुभूति के साथ, परिपक्व भाव के साथ उनके इस गलतियों को समझना है, मूल्यांकन करना है, हस्ताक्षेप करके उनको बड़े स्नेह और करुणा के भाव से युक्त होकर सुधारने का प्रयास करना है, जैसे ब्रह्मा जी ने इस तरह प्रयास किया। श्याम सुंदर प्रभु जब ज्वाइन हो गए प्रभुपाद जी को तो उसके दो वर्ष के पश्चात लगभग 1969 की बात है, वो आए प्रभुपाद के पास आकर बोलने लगे कि मैं तो आपके साथ जुड़ गया हूं, आपका शिष्य भी हो गया, लेकिन एक बुरी खबर है। तो प्रभुपाद ने कहा, क्या बुरी खबर है? तो श्याम सुंदर प्रभु ने कहा, बुरी खबर यह है कि पिछले कुछ अपराधों के कारण मुझे जेल में जाना होगा। अब श्याम सुंदर प्रभु को लग रहा था कि प्रभुपाद जेल की बात सुन के उनको तिरस्कार करेंगे, उनके साथ संबंध नष्ट कर देंगे या घोषणा करेंगे कि चलो तुमको इस्कॉन से हम निष्कासित करते हैं, आपके कारण इस्कॉन बदनाम हो रहा है, जाओ निकलो। लेकिन प्रभुपाद ने कहा, जेल की बात सुन के प्रभुपाद कहते हैं, अरे कृष्ण का भी तो जन्म जेल में हुआ। तो इसको सुन के श्याम सुंदर प्रभु को बहुत अच्छा लगा कि अरे ये जेल की बात सुनकर प्रभुपाद ने मुझे बहिष्कार नहीं किया, स्वीकार किया। क्योंकि जेल की बात होती है बदनामी की। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था जेल में, आर्थर रोड में, सामने हमारे 3-4 कैदी बैठे थे, सबके गले में कंठी माला थी, कृष्ण का लॉकेट लगा हुआ था, माथे पे तिलक था। अब मैं चकरा गया, कौन है ये लोग? मुझे लगा दूसरे कोई पंथ के लोग आए हैं क्या, या मुझे लगा मेरे बाद लेक्चर देने वाले हैं क्या। या फिर वहीं के कैदी हैं क्या? अब जेल में किसी को पूछ भी नहीं सकते कैसे आना हुआ, क्योंकि उस समय मेरा लेक्चर चल रहा था जेल में, तभी टेलीफोन ऑपरेटर को मंदिर में फोन आया और ऑपरेटर ने पूछा गौरांग प्रभु कहाँ है, ऑपरेटर ने कहा जेल गए हैं। तो गेस्ट शाम को मेरे को फोन करके पूछा है प्रभु सब ठीक है ना, मैंने कहा क्या हो गया, जेल गए थे। मैंने कहा अरे लेक्चर के लिए गए थे भैया, हम लोग सब जगह जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको जेल की बात सुन के भी बहिष्कार नहीं किया, फिर प्रभुपाद ने कहा जेल क्यों जा रहे हो? तो श्याम सुंदर प्रभु बोलते हैं प्रभुपाद जी आई वॉज डीलिंग विथ ड्रग्स। प्रभुपाद कहते हैं मी टू, मैं भी ड्रग्स का व्यापार करता था, प्रयाग फार्मेसी चला रहा था। तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल मैटर को ठंडा कर दिया और फिर श्याम सुंदर प्रभु ने कहा 5 साल की सजा है, मुझे जाना है। प्रभुपाद ने कहा चिंता मत करो, हरि नाम लेते रहो, छोड़ देंगे वो लोग। अब दूर दूर तक कोई संकेत नहीं था कि वो छूट जाएंगे, लेकिन वास्तव में वो गए। 6 महीने में जेल के अधिकारी आके बोलते हैं आपको मुक्त कर रहे हैं। वो बोले यार क्या हो गया? वो अधिकारी बोला मुझे भी पता नहीं, मेरे को तो आदेश मिला है। तो आज तक पता नहीं कि कैसे वो आदेश मिला, कि 5 साल की सजा 6 महीने में कैसे रफा दफा कर दिया। क्योंकि अगर 5 साल श्याम सुंदर प्रभु जेल में होते तो 74 तक बाहर नहीं निकलते, और न होता बीटल्स का प्रचार, और न होता भारत में क्रॉस मैदान। क्रॉस मैदान नहीं होता तो राधानाथ महाराज नहीं होते, वो नहीं होते तो आप और हम कहां होते। तो इसलिए इतिहास के पन्नों में जो एक एक घटना घटती है वो बहुत मायने रखती है। जिसने भी जेल ऑर्डर रिलीज किया उनको, उसके लिए हम लोग एक बार महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो फिर श्याम सुंदर प्रभु बॉम्बे में आ गए क्रॉस मैदान का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने। पहली बार इंडिया आ रहे हैं, 22-23 वर्ष की आयु उनकी, इतने कम उम्र में वो आए और उनको कुछ पता नहीं, हिंदी जानकारी नहीं, कुछ नहीं, और प्रभुपाद बस एकमात्र इंडियन है जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, जो जिनको जानते हैं। कालबा देवी मार्केट में गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, भारत में प्रथम बार गाड़ी चला रहे हैं। और इंडिया में गाड़ी चलाना हो तो आपको पता है कि ड्राइविंग स्किल से अधिक बहुत कुछ चाहिए। तो चलाते चलाते गाड़ी उनका ठोकर लग गया एक आदमी को और आदमी नीचे गिर गया। तो श्याम सुंदर प्रभु देखे कि चारों तरफ पब्लिक घेर लिया, तो उनको लगा अभी तो मेरे को यहीं दफना देंगे, तो भगवान का नाम लेने लगे। अचानक पब्लिक सीधा वो आदमी के ऊपर टूट पड़ा जो नीचे गिरा था, उसकी पिटाई करने लगे। तो श्याम सुंदर प्रभु बोले यार ये क्या है, गलती तो मैंने की, उसको क्यों मार रहे हैं? फिर उनको लगा शायद भारत में वहां से स्टार्ट करते फिर मेरे ऊपर आक्रमण होगा। तो सोच रहे थे क्या होगा, तब तक पब्लिक हट गया और बोला आगे निकलो। तो बोले ऐसे कैसे? किसी एक व्यक्ति को पूछा ये क्यों किया, तो वो कहते हैं कि देखो आप कृष्ण के भक्त का वेश धारण किए हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको डिस्टर्ब करने की? तो बोले यार कमाल है, ये यहां पर ऐसे संस्कार हैं कि केवल कृष्ण के भक्त का वेश धारण कर लो तो लोग इतना सम्मान करते हैं। तो वास्तव में कृष्ण के भक्त के गुण अपनाकर अगर व्यक्त करेंगे तो क्या होगा? तो इसलिए यहां पर अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि पृथु महाराज की विशेषता ये थी। हाँ एक और दो श्लोक में सुनाता हूं। नैवात्मने महेंद्राय रोषम अर आरहतुम अरहसी उभव अपि ही भद्रम ते उत्तम श्लोक विग्रह मास्मिन महाराज कृतास्म चिंताम निशामयास्मत वच आदृतात्मा। तो बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं कि पृथु महाराज को ब्रह्मा जी मास्मिन महाराज कृतास्म चिंताम निशामयस्मत वच आदृतात्मा, मैं जो तुमको एडवाइस दे रहा हूं वच आदृतात्मा आदर के साथ सुनना। क्योंकि माथे में जब क्रोध का पारा चढ़ा रहता है तो सामने वाला कोई अच्छा बात भी बोले तो अपने को लगता है कि ये बेवकूफ है। व्यक्ति बेवकूफ नहीं होता, लेकिन क्रोध के कारण हमको ऐसा प्रतीत होता है। तो इसलिए कह रहे हैं निशाम यास्मत वच आदृतात्मा, मेरे वचनों को आदर से सुनिए। क्या यत ध्यायतो दैव हतम नु कर्तुम, आपने बहुत योजना बनाई, बहुत प्लानिंग किया, बहुत विचार किया कि मैं ये कार्य संपन्न करूंगा, सफल करूंगा, हर प्रकार से योजना बनाकर प्रयास भी किया, लेकिन यत ध्यायतो दैव हतम, अगर इतनी योजना बनाने के बाद भी जब वो योजना विफल हो जाए तो समझना चाहिए दैव हतम। दैव डेस्टिनी, भगवान की इच्छा ने उसको नष्ट किया है, और भगवान की इच्छा से जब कोई वस्तु नष्ट हो जाए, मनो अतिरुष्टम विषते, मन के अंदर निरंतर संकल्प या ध्यान नहीं करना चाहिए कि ये प्लान क्यों बिगड़ गया, क्यों बिगड़ गया, क्यों बिगड़ गया, क्यों बिगड़ गया। निरंतर मन के भीतर ऐसे क्रोधावेश में आकर विचार मत करते रहो, क्रोध और बढ़ेगा। मनो अतिरुष्टम, और जब मन अतिरुष्ट होगा, विषते प्रवेश करोगे तमो अंधम, तमो गुण में प्रवेश करोगे। तो इसलिए चाहे कितना भी शक्तिशाली बुद्धिमान व्यक्ति क्यों न हो, भगवान ये भी बताना चाहते हैं, भगवान के ही अवतार जैसे इंद्र और पृथु, उनके भी प्लान हमेशा सफल नहीं होते, उनकी योजनाएं भी कई बार विफल होते हैं और उनको सहन करना पड़ता है। इसलिए जब योजना भंग हो तो उस समय निरंतर मनन चिंतन नहीं करना चाहिए, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, तमोगुण को प्राप्त करोगे। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ समथिंग हैपन्स बाय प्रोविडेंशियल अरेंजमेंट वी शुड नॉट बी वेरी सॉरी, द मोर वी ट्राई टू रेक्टिफाई सच रिवर्सल्स द मोर वी एंटर इन टू डार्केस्ट रीजन्स ऑफ मटीरियलिस्टिक थॉट। समटाइम्स saintly or very religious person also has to meet reversals in life. Such incidents, although providential, they may be sufficient cause for being unhappy. One should avoid counteracting such reversals. For the more we become implicated in rectifying such reversals, the more we enter the darkest regions of materialistic thought. Therefore, Prithu should not be meditating on the incomplete सेक्रीफाइस। तो इसलिए कई बार हमको लगता है ये कार्य मैंने आरंभ किया, सफलता अर्थात कार्य को संपन्न करना, भौतिक दृष्टि से अ वर्क कंप्लीटेड इज कॉल्ड वर्क सक्सेसफुल, अ वर्क इनकम्प्लीट इज ऑटोमेटिकली डिफाइंड एज अनसक्सेसफुल। इसलिए कोई व्यक्ति किसी कार्य को असंपन्न, अपूर्ण नहीं छोड़ना चाहते। When you begin something, you want to have the satisfaction of completing it. अब 99 कर लिए, एक रह गया, है कि नहीं? तो इसलिए सफलता, परिपूर्णता, संतोष किसमें है? एक और यज्ञ करो, 100 करो, कंप्लीट, सेटिस्फाइंग, फुलफिलिंग, सक्सेसफुल। तो भगवान भागवत के अनुसार कहते हैं, भैया फ्रॉम भागवतम पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज नॉट सक्सेसफुल, फुलफिलिंग, सेटिस्फाइंग। सबमिटिंग एंड लिसनिंग टू द लॉर्ड इज सक्सेसफुल, फुलफिलिंग, कंप्लीट। फिनिशिंग द एक्टिविटी इज नॉट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो ये समझना आवश्यक है, कार्य को समाप्त करना ये सफलता नहीं, उस कार्य को भगवान की इच्छा अनुसार करना ये सफलता है। और भगवान ने कहा इस कार्य को इनकम्प्लीट छोड़ो, 99 के बाद छोड़ दो, और अगर आपने 99 के बाद उस कार्य को छोड़ दिया वो सफल है, वो कंप्लीट है। इसलिए आपके कंप्लीशन और सक्सेस का जो परिभाषा है उसको बदलिए। वो यहां पर मुख्य प्रमाण वर्णित हो रहा है। पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देव मायया, श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यज्ञ के मैदान में प्रवेश किए हैं इंद्रदेव, किसके साथ? भगवान विष्णु। तो एक तो ब्रह्मा जी ने लेक्चर दिया पृथु को, अब पृथु को लेक्चर देने आ रहे हैं विष्णु, और विष्णु इंद्र को अपने साथ गले में गले लगा के आ रहे हैं, अपराधी को साथ लेके आ रहे हैं। तो ये जो आप दृश्य देख रहे हो, इस दृश्य के मर्म को जो समझ जाए वो भक्तों के संग में लंबे समय तक सेवा कर पाएगा। यहां यह वर्णन किया गया है कि भौतिक जगत में शक्ति का प्रदर्शन सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, लेकिन वैष्णव समाज में अपने मतों को समर्पित करके शक्तिशाली लोग जब एकत्रित हो जाएं और अपने शक्तिशाली मतों को न्योच्छावर कर दें, तिरस्कृत कर दें, और वापस में आपस में समन्वय करने का प्रयास करें, यह उनकी वास्तविक शक्ति मानी गई है। तो इसलिए भगवान यहां पर खड़े होकर बड़े संतुष्ट हैं, गरुड़ जी के साथ खड़े हैं, देखिए। और भगवान क्या देखकर संतुष्ट हो रहे हैं कि पृथु और इंद्र दोनों अपने मतभेदों को एडजस्ट करते हुए, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी डज नॉट मीन देर इज नो एनवी, देर विल बी एनवी, बट द सीक्रेट इज हाउ विल यू एडजस्ट योर एनवी। तो प्रभुपाद जी उसमें लिख नहीं रहे कि बिकम एनवी फ्री, वो तो फिर वैकुंठ हो जाएगा, बट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी डिवोटीज लर्न हाउ टू एडजस्ट देयर एनवी। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, स्पृशंतम पादयोर प्रेरणा व्रीडितुम स्वेन कर्मणा शतक्रतुर परिश्वज्य विद्वेशम विससर्ज। जितने भी आप भागवतम में और प्रभुपाद के बुक्स में पिक्चर्स देखते हो, हर एक पिक्चर एक श्लोक के ऊपर आधारित है। तो ये जो चित्र बना है ये इस श्लोक के ऊपर आधारित है। स्पृशंतम पादयोर प्रेमणा, जब इंद्रदेव ने बड़े प्रेम से पृथु महाराज के चरणों को ग्रहण करने का प्रयास किया, प्रेमणा व्रीडितुम स्वेन, उन्होंने प्रेम से उनको उठाकर अपनी बलिष्ठ भुजाओं से आलिंगन कर लिया। शतक्रतुर परिश्वज्य, और छ फिर उन्होंने आलिंगन किया विद्वेशम, द्वेशम का अर्थ है किसी के प्रति द्वेष, विद्वेशम अर्थात किसी विशेष व्यक्ति के प्रति हमारा द्वेष, विद्वेशम। तो ऐसा नहीं कि यहां पर पृथु और इंद्र का कुछ लोगों के साथ द्वेष था, दोनों का एक दूसरे के प्रति एक विशेष द्वेष था, विद्वेशम वि ससर्ज। दोनों को उन्होंने, दोनों ने अपने अपने भावनाओं को परित्याग किया और आलिंगन किया। इसलिए कहा गया है, सुधिया साधवो लोके नरदेवो नरोत्तम नापि द्रुह्यन्ति भूतेभ्य यरहिनात्मा कलेवरम। तो बुद्धिमान लोग वो हैं जो वास्तव में अपने जीवन के लक्ष्य को समझकर उसके आधार पर कार्य करेंगे। इस प्रकार आगे पृथु महाराज अपने साम्राज्य के नागरिकों को सुंदर वाणी से संदेश करते हैं, और तब चतुष्कुमार उनको उनके साम्राज्य में उनका दर्शन करने आते हैं। और जैसे ही चतुष्कुमार प्रवेश करते हैं, अगले स्लाइड में दो श्लोक उसमें से हम लोग वर्णन करेंगे, जो पृथु महाराज कुमारों के सामने प्रस्तुत करते हैं। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रहयन्ति संतः। तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोपि रुद्धा, श्रोतो गणस्तमरणं भज वासुदेवम्। तो यहां पर चतुष्कुमार पृथु महाराज को वर्णन कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि जो कृष्ण का भक्त बन जाए, कृष्ण भक्ति के सागर की लहरें जब चलती हैं तब फिर चाहे कितने भी दूसरी इच्छाएं आए, ये सागर की लहरें उन इच्छाओं को पूर्णतः आप्लावित कर देंगी। हर प्रकार की भौतिक इच्छा, ऐसे कृष्ण भक्ति के तीव्र दिव्य आध्यात्मिक निर्मल इच्छाओं के सामने तुच्छ हो जाती। इसलिए तद्वत् न रिक्त मतयो यतयोपि रुद्धा। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने भगवद गीता में गीता का नाम दिया भगवद गीता एज इट इज, और विशेष रूप से प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में भक्ति की पुष्टि हुई है, क्योंकि गीता में हर प्रकार के मार्गों का वर्णन है लेकिन भगवान उन सभी मार्गों का निष्कर्ष देते हैं भक्ति। भक्तिया तु अनन्या शक्या, भक्ति ही भगवान के द्वारा अंततोगत्वा प्रतिपादित है, इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य भी उसी दिशा में है। इसलिए जब तक प्रभुपाद के ग्रंथों को हम भक्ति के दृष्टिकोण से नहीं समझेंगे तब तक हम ये गीता क्या है नहीं समझ सकते। एक हमारे भक्त नासिक में हम लोग का बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बुक टेबल लगाए थे, और बुक टेबल को देखकर एक वहां का लोकल गुंडा आ गया और बहस करने लगा किसको पूछ के लगाया है। तो हमारे एक भक्त खड़े थे जो पहले फौज में थे, उनको भी नॉनसेंस पसंद नहीं था। तो जैसे ही इस व्यक्ति ने इस तरह प्रश्न उठाया किसको पूछ के आपने लगाया, उसने कहा अरे तुमको पूछ के लगाना होता है क्या, हम लगा रहे हैं क्योंकि हम किताब वितरण कर रहे हैं, भगवान के संदेश को बांट रहे हैं, आपको पूछने की आवश्यकता है। तो गुंडा बिल्कुल गुस्सा हो गया और सीधा वो भक्त का गला पकड़ने गया। ए भक्त ने लगा दिया एक तमाचा, ऐसा तमाचा लगाया और दूर जाके गिरा और उठा और मुड़ के चला गया। तो बाकी ब्रह्मचारी लोग आकर हमारे फौजी बाबा को बोलने लगे यार ऐसा क्यों किया, हम लोग का क्या होगा, तुम तो फौजी हो हम तो मौजी हैं, वो कल आके हमारी पिटाई करेगा, हम कैसे बचाव करेंगे। तो वो कहता अरे चिंता मत करो कृष्ण है ना, इतना क्यों डरते हो। तो अगले दिन ये लोग सब बुक टेबल पर खड़े थे, वही गुंडा चार आदमी को लेके आने लगा, उसको देखकर बाकी भक्त लोग बोले अरे मुझे कपड़ा धोने जाना है, एक बोलता मैं थोड़ा कुकिंग करने जाता हूं। अचानक सबके अंदर सेवा भाव प्रकट हो गया और फौजी बाबा अकेले खड़े थे, और जैसे ही ये गुंडा आया बोलता अरे तुम ही थे क्या जो मुझे कल झापड़ मारे, तो बोलते हाँ और खाना है क्या। और गुंडा जेब में से 500 रुपए निकाल कर बोलता है चार भगवद गीता देना मुझे। तो अगर इसको देखकर अपन सोचे ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा टेक्निक है तो ये हमेशा काम नहीं आएगा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को बोले कि यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो इसलिए यहां पर कहा गया है श्रोतो गणस्तमरणम भज वासुदेवम। जब भगवान वासुदेव को हम पूजेंगे तो अपने आप हृदय की हर प्रकार की इच्छा संशय संदेह भय इत्यादि सब नष्ट होगा और दूसरों का भी हम इस तरह से भला कर सकते हैं। इसलिए प्रभु कहे आगे कह सुनिते पाए सुखे, अपूर्वामृत नदी वहे तुमार मुखे। हृदय प्रेरणा करो, जिह्वाए कहो वाणी की कोहिए भालमंद की छुई न जानी। महाप्रभु जब कहते हैं रामानंद राय को, आप आगे सुनाइए कथा को, वो कहते हैं अरे मैं क्या जानू, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तो बोले जा रहा हूं, आप वास्तव में हृदय के अंदर से प्रेरणा कर रहे हो। प्रभु कहे मायावादी आमी तो सन्यासी, भक्ति तत्व नहीं जाने मायावादी भाषी। सार्वभौम संगे मोर मन निर्मल होइला, कृष्ण भक्ति तत्व कहता हरे पूछिला। तेहो कहे आमी नहीं जाने कृष्ण कथा, सबे रामानंद जाने तेहो नहीं ये था। तुम्हार ठाने आयला तुम्हार महिमा सुनिया, तुम्हें मोर स्तुति कर सन्यासी जानिया। तो महाप्रभु कहते मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो मायावादी सन्यासी हूं, मैं तो भक्ति तत्व नहीं जानता। सार्वभौम भट्टाचार्य के संग में मैं शुद्ध होकर उनको पूछा कृष्ण भक्ति तत्व सुनाओ, और वो कहते मैं कुछ नहीं जानता, रामानंद राय सब जानते हैं, इसलिए उनके प्रस्ताव पर मैं यहां पर आपके सामने आया हूं, आपसे कथा सुनने का अभिलाषी हूं, और अगर आप बैठकर सामाजिक दृष्टिकोण से मुझे सन्यासी के रूप में स्वीकार करके मेरी स्तुति करने लगोगे तो फिर मेरे हृदय में क्या आशा बचेगी कि मैं आपके चरणों में बैठकर विनम्र होकर आपसे कथा सुन सकूं। इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक औपचारिकता के अनुसार सन्यासी को सम्मानित करना अनिवार्य है, लेकिन दिव्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर भक्त को कृष्ण कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। और इसलिए महाप्रभु कहते हैं मैं सन्यासी ब्राह्मण, इतना बड़ा पंडित होते हुए भी आप रामानंद राय के मुखारविंद से कृष्ण कथा सुनने का अभिलाषी हूं। मैं ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हर भक्त को अपने साधना के जीवन में साधना का पोषण करने के लिए विनम्रता पूर्वक श्रवण करना आवश्यक है, चाहे वो ग्रंथ से श्रवण हो या प्रवक्ता के चरणों के सामने बैठकर श्रवण करें, लेकिन ये श्रवण का तत्व बड़ा आवश्यक है। इसलिए यहां कह रहे हैं तद्वद रिक्तमतयो यतयोपि रुद्धा श्रोतो गणा तमरणस भज वासुदेवम। इस प्रकार आगे पृथु महाराज वानप्रस्थ का जीवन प्राप्त किए और पृथु और अर्ची दोनों भगवत धाम जाते हैं। फिर उनके आगे विजिताश्व हविर्धाना, हविर्धाना के पुत्र प्राचीनी बरही और फिर उनके पुत्र प्रचेतास। अब प्राचीनी बरही और प्रचेतास का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रचेतास एक बार तप करने के लिए गए और जब सरोवर में गए तो उनको शिवजी के दर्शन हुए, और शिवजी उनके सामने प्रकट होने पर उन लोगों को विशेष मंत्र दिया और इसको कहा गया है रुद्र गीत। दर्शनम नो दिदृक्षु नाम देही भगवतार्चितम प्रीतम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। तो शिवजी भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं प्रभो मैं आपके सुंदर रूप को प्रणाम करता हूं, जो वास्तव में हमारे अंग प्रत्यंग को पूर्णतः संतुष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेंद्रिय गुणांजनम, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का जो दर्शन करेगा उसकी सारी इंद्रियां पूर्णतः संतुष्ट हो जाएंगी। इसलिए यहां कहा गया है कि श्रील प्रभुपाद जी ने आरंभ के दिनों से इस्कॉन के मंदिरों में विग्रहों की स्थापना कर दी। भले भक्त लोग पूर्णतः सुयोग्य नहीं थे, लेकिन योग्यता के अभाव में भी प्रभुपाद जी ने डीटीस इंस्टॉल किए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि उनकी सेवा करके भक्तों का विकास होगा, दूसरा समय के साथ साथ हो सकता है भक्तों का कभी पतन हो जाए। जैसे मैंने कहा वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का वर्णन आ रहा है, सहस्र सेवक सेवा करे अनुक्षण। लगभग 1590 और 1670 के बीच में जब गोविंद देव मंदिर की सेवा की पराकाष्ठा थी, उस समय हजारों भक्त लोग सेवा कर रहे थे वृंदावन में गोविंद देव मंदिर में। सोने चांदी हीरे मोती के उपहार भेंट चढ़ाए जा रहे थे। लेकिन औरंगजेब के आक्रमण के पश्चात जो दहशत मची और जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, उसके बाद शायद वृंदावन का उस प्रकार का ऐश्वर्य पुनर्स्थापित कभी नहीं हो पाया। तो कालक्रम के प्रभाव से हो सकता है भक्तों के भी उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन विग्रह कहीं जाएंगे नहीं, तो विग्रह जब तक रहेंगे सेवा का वर्धन होता रहेगा। उसी प्रकार अमेरिका यूरोप में कई कई जगह कई इस्कॉन के लीडरों का पतन हुआ, समस्या हो गई, वो छोड़ कर गए, और वो गए तो उनके साथ सारे भक्त लोग भी छोड़ के चले गए, लेकिन भगवान बड़े प्रेम से खड़े होकर मुरली बजाते हुए प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारी सेवा में और नए सेवक आएंगे। तो इसलिए भगवान की सेवा करते समय हमको ये नहीं सोचना चाहिए मैं सेवा दे रहा हूं इसलिए इनका कुछ चल रहा है, नहीं, हम हो न हो वो हमेशा रहेंगे। इसलिए मदन मोहन की स्थापना करते समय राधानाथ महाराज बता रहे थे कि देखो भैया, आप और मैं कब तक रहने वाले हैं, चार दिन की चांदनी, कब तक हम लोग का जीवन चलेगा। लेकिन पत्थर का मंदिर बन गया, विग्रह स्थापित हो गए, हजार साल तक ये भगवान यहां खड़े होकर मुरली बजाते हुए जीवों का उद्धार करते रहेंगे, आकर्षित करते रहेंगे। अब दूसरे लोग समझे नहीं समझे कि मदन मोहन क्यों स्थापित किए हैं, वो कोई मूड में आके आवेश में आके अचानक थोड़ी कर दिए, बद्ध जीवों के उद्धार के लिए किया है इनको। हां, इतिहास के उस क्षण में आप और मैं यहां हैं और इसमें निमित्त बनने का हमको अवसर मिला है, यह अलग बात है। लेकिन मदन मोहन की लीला आपके और मेरे जीवन काल से बहुत परे है, और उनके यहां पर आकर लीला करने का तात्पर्य आप और मेरे जीवन के समस्याओं से भी परे है। इसलिए क्षुद्र बुद्धि से हम कभी विचार नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रभुपाद ने अफ्रीका में भी डीटी स्थापित किए। अफ्रीका के एक मंदिर में राधा श्याम सुंदर के विग्रह काले मार्बल में भगवान को लगाया, वहां पर गुंडे लोग घुस गए और बंदूक लेकर सीधा पुजारी के सर पे रखकर बोलते हैं धज्जियां उड़ा देंगे तेरा, गोली से मार देंगे। पुजारी राजभोग आरती कर रहा था दिन दहाड़े, पुजारी बोला आरती कंप्लीट करता हूं फिर मारो। तो ये चौंक गया, बोले यार इतना निर्भय आदमी कौन है ये। तो फिर वो गुंडों का जो मालिक था नेता, वो भगवान कृष्ण के विग्रह को देखकर पूछता है ये कौन है बताओ। पुजारी कहता है ये मेरे भगवान है। तो फिर वो गुंडा पूछता है ये बगल में खड़ी है गोरी वो कौन है। तो बोलते अभी भक्त सोचने लगे इनको क्या बताऊंगा, राधा रानी वाधा रानी इनको क्या समझेगा, इनके तो पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो ये सफेद वाली कौन है, गोरी कौन है। तो बोलते ये भगवान की पत्नी है। तो तुरंत वो डकैतों का नेता मुड़कर अपने सभी डकैतों को बोलता है इनको हम नहीं मारेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं, छोड़ के चले जाते हैं इनको, काले भगवान की गोरी पत्नी है, बहुत बढ़िया। तो उनके दृष्टिकोण से उनको लगा कि यहां पर तो बाहर की दुनिया हमारा अपमान करती है, इस्कॉन वाले बहुत सम्मान कर रहे हैं, इनके भगवान ही काले। तो प्रभुपाद जी नैरोबी में लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद बोले कृष्णा इज ब्लैक, तालियां बजने लगी जोर से। प्रभुपाद ने कहा नॉट लाइक यू, भौतिक रूप से नहीं, सच्चिद आनंद विग्रह है। तो इसलिए यहां पर रुद्र गीत में शिवजी अपने ही मुख से भगवान की स्तुति करके सब लोगों के सनातन काल के संशय को दूर करते हैं कि कौन किसके स्वामी है। शिवजी के स्वामी भगवान विष्णु है। आगे प्राचीनी परिषद हर प्रकार के पशु यज्ञ में लगे थे, उसको देखकर नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि आकर पुरंजन की आख्यान सुनाते हैं। तो पुरंजन की कथा एक एलेगोरी या उपमा के रूप में है आगे, और इसमें वर्णन किया गया है कि कैसे नौ द्वारों का एक शहर है, और ये नौ द्वारों का शहर क्या है? शरीर। और फिर उसमें एक निवासी रहता है, वो कौन है? आत्मा। फिर वो एक स्त्री को मिलता है, वो है बुद्धि। और फिर परिवार और जननी, बाकी हमारे बच्चे इत्यादि। और फिर आक्रमण होता है चंड वेग का, इस शहर पर चंड वेग का आक्रमण होता है। चंड वेग कौन है? काल। काल स्वरूप का आक्रमण होता है, तत्पश्चात वो इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। और ऐसे पुनर्जन्म से बचने के लिए उसे चाहिए कि गुरु का आश्रय ले, गुरु की सेवा करे। इस प्रकार कैसे पुरंजन ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया, इसको जब विस्तृत वर्णन करते हैं तो प्राचीनी परिषद को लगने लगता है कि ये तो बड़ू जाना पहचाना हमको कथा लग रही है। तो नारद मुनि ने कहा, बिल्कुल लगेगा ही, तेरे बारे में बोल रहा हूं मैं। तो इसलिए भागवत में वर्णन आया है, श्रुतेन अर्थेन अंजसा। अगर डायरेक्ट किसी को गाली दो तो उसको अच्छा नहीं लगता, कोई एग्जाम्पल देख के गाली दो तो उनको लगता है हाँ सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बाद में अकेले में वो समझता है, अरे वास्तव में मैं ही था क्या वो। इसलिए जब व्यक्ति को अवसर दिया जाए कि खुद वो उत्तर ढूंढ ले तो बुद्धिमान लोगों को ये पसंद है। तो इसलिए यहां पर आगे मृग का, किस तरह मृग एक वन में भ्रमण करते हुए मृग तृष्णा के पीछे पागल होकर अपना जीवन व्यर्थ गंवाए, इसका भी एक वर्णन आता है कि किस प्रकार आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त करके, जो हमारे सूक्ष्म देह मन के भीतर वासनाएं होंगी, जब तक उन वासनाओं से हम शुद्ध नहीं होंगे हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो इसलिए मन के अंदर जो हम अपने विचारों को धारण कर रहे हैं, मन के उन मानसिक विचारों से मुक्त होना अनिवार्य है। और ऐसे मानसिक विचारों से मुक्त होने के लिए वैष्णव संघ स्थापित किया गया है। जुजी विषे नाहम इहा मुया किम अंतर बहिर्चा वृते भयोन्या पश्यामि कालेन नयस्य विप्लवो तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम। हमारे आठवें स्कंद में गजेंद्र जी कहते हैं कि जगत में हर वस्तु को काल शक्ति समाप्त कर देगी, लेकिन काल शक्ति का प्रभाव केवल एक वस्तु को स्पर्श नहीं कर सकता, वो है अज्ञान। टाइम कैन नॉट टच इग्नोरेंस। और इसलिए अज्ञान को समाप्त करना हो तो केवल वैष्णव कृपा और वैष्णव सत्संग के माध्यम से ही वो नष्ट हो सकता है। इसलिए वैष्णव सत्संग सबसे शक्तिशाली तत्व है पूरे ब्रह्मांड का, क्योंकि वैष्णवों को जब हम संतुष्ट करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद से हृदय के अंदर अज्ञान रूपी तम को भगवान पिघलाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे वैष्णव सत्संग के शक्ति को समझें। एक व्यक्ति प्रभुपाद को आके कह रहे थे कि इस्कॉन के भक्त लोग सब जगह किताब वितरण करते रहते हैं, हम जहां भी जाते हैं एयरपोर्ट में जाते हैं वहां बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं, इतना आप लोग बुक बांटते रहते हो, आप लोग बुक वर्म हो। प्रभुपाद ने कहा, आप बुक नहीं पढ़ोगे, आप स्टूल वर्म बनोगे, तो बताओ कौन सा अच्छा है। तो जब कोई व्यक्ति एक किताब को पढ़ता है, इन ग्रंथ के अंदर तत्व ज्ञान को समझता है, तो इस तत्व ज्ञान को समझकर उसकी मानसिक प्रवृत्तियां शुद्ध होती हैं। आगे प्रचेतास, फिर भीषण तपस्याओं के पश्चात जब भगवान विष्णु उनके सामने आकर कहते हैं, आपके दीर्घकालीन सौहार्द को देखकर मैं प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे रहा हूं, और तब जाकर विष्णु भगवान उनको दर्शन देते हैं। प्रचेतास वृक्ष की पुत्री कन्या मारीची से विवाह करके उनसे प्रकट होते हैं दक्ष प्रजापति। आगे प्रचेतास सेवानिवृत्त होकर नारद मुनि से मिलते हैं और नारद मुनि से मिलकर वो इस तत्व ज्ञान को पूरी तरह प्राप्त कर लेते हैं। तत्पश्चात विदुरदेव मैत्र ऋषि को हृदय पूर्वक अभिवादन करते हैं और हस्तिनापुर के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं। और इसलिए यहां कहा गया है कि मैत्र ऋषि और आगे कथा सुनाने के लिए तैयार थे, लेकिन विदुर जी ने सोचा अगर कथा सुनते रहेंगे तो धिक्कार जो मक्कार धृतराष्ट्र है उसका क्या होगा, धृतराष्ट्र को भी तो उद्धार करना है। अगर धृतराष्ट्र का उद्धार नहीं किए तो फिर जीवन में एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो इसलिए वैष्णव गण वृंदावन में बैठे भजन करते हुए राधा दामोदर मंदिर में कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, वो राधा दामोदर मंदिर छोड़कर गए अमेरिका प्रचार करने। क्यों? क्योंकि सरस्वती ठाकुर की इच्छा थी, आचार्यों की वाणी थी। प्रभुपाद ने वहां जाकर कहा हम वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी चालू करेंगे, तो उसको सुनकर हमसदूत प्रभु भागे भागे गए। एक हिप्पी ने एक पुराना बस दिया था, वो टूटा फूटा बस लेके आ गए और प्रभुपाद को भुला लिया। वो बस इतना गया गुजरा था कि उसमें कोई खिड़की भी नहीं और स्टीयरिंग व्हील के सामने कांच भी नहीं, पेंट भी नहीं, एक ही सीट था ड्राइवर का। प्रभुपाद प्रवेश किए, बोले मैं कहां बैठूंगा, तो भक्त लोग भागे भागे एक चेयर लेके आए। प्रभुपाद बोले बस चलेगा तो चेयर भी हिलेगा भैया। तो ब्रह्मानंद प्रभु भागे भागे आए, बिल्कुल हट्टे कट्टे तगड़े थे, वो पकड़ लिए चेयर को, वो बोलेगा अब नहीं हिलेगा, बैठो आप। प्रभुपाद बैठ गए। फिर हमसदूत प्रभु ड्राइविंग कर रहे थे, इग्निशन ऑन किया, जैसे इग्निशन ऑन किया धुआं निकलने लगा। धुआं निकलता हुआ देखकर प्रभुपाद ने कहा ओ लुक्स लाइक एन इंडियन बस। तो हमसदूत प्रभु कभी इंडिया नहीं आए थे, उनको लगा प्रभुपाद स्तुति कर रहे हैं। 3 साल बाद जब इंडिया आए तब समझा कि तब गाली दिया था। तो प्रभुपाद के पास उस समय सहायता करने वाले कोई नहीं थे, लेकिन जो 2-4 लोग थे, प्रभुपाद ने कहा आप लोगों का सबसे बड़ा गुण क्या है, आपके अंदर सेवा करने का उत्साह है। इसलिए प्रभुपाद जी की सफलता के पीछे मूल सूत्र क्या थे, 3 मूल सूत्र थे। नंबर 1, प्रभुपाद वॉज वेरी हम्बल। 2, ही वॉज एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक। 3, ही अप्रिशिएटेड ऑल। 4, ही रेस्पेक्टेड, ही एम्पावर्ड दोज हु वेर रियली केपेबल। एंड 5, ही गेव क्रिएटिव फ्रीडम। अगर लीडर होकर सफल होना है तो ये 5 गुण बहुत आवश्यक है। Without humility, without enthusiasm, without appreciation, without empowering, and without giving creative freedom, nobody can do anything. तो इसलिए प्रभुपाद जी के सफलता का ये प्रमुख सूत्र रहा। और हम देखते हैं कि चौपाटी में भी उस समय परम पूज्य जो राधानाथ स्वामी महाराज आ गए 1988 में, तो ऐसा नहीं कि यहां पर बहुत बड़ी योजना बनाई थी कि यहां पर हम बहुत बड़ा कोई कार्य करेंगे और चौपाटी इस्कॉन खड़ा करेंगे, ऐसा परिस्थितियां कुछ ऐसी थी। और अमेरिका में मंदिरों की परिस्थिति कुछ ऐसी थी वहां पर, जिसके कारण वहां का मंदिर ही इस्कॉन से बाहर हो गया। और हो सकता है वहां पर कुछ लोग इनके उपस्थिति से घबरा रहे थे, तो कई परिस्थितियों से उनको यहां भेज दिया गया। तो इसलिए यहां पर आने के पश्चात एक दृष्टि से वो विचार कर सकते। और उस समय महाराज जी के वहां पर चार पांच कॉलेज प्रोग्राम चल रहे थे अमेरिका में, हर एक प्रोग्राम में 300-400 लोग स्टूडेंट्स आते थे। जैसे वो आए यहां चौपाटी के कोने में, पहले ही साल में जैसे आए 9 महीना यहां थे, वो 9 महीने में वो 4-5 प्रोग्राम जो उनके चल रहे थे उसको बंद कर दिया गया। अब सोचो आपसे बिना पूछे आपके प्रोग्राम को कोई बंद कर दे और आपको और कहीं भेज दे जहां कुछ नहीं हो रहा, तो समझना चाहिए क्या चल रहा है। तो इसलिए नम्रता और सहनशीलता के ऊपर लेक्चर देने के पहले आदमी अपने जीवन में नम्रता और सहनशीलता अनुभव करता है और व्यक्त करता है, तब जाकर वो बोल पाता है और दूसरों पर प्रभाव कर पाता है। तो कई बार लोगों को लगता है कि उनकी योजना थी यहां चौपाटी में कुछ करने की, उनकी योजना नहीं थी, उनको तो पता नहीं किस परिस्थिति में भेज दिया। लेकिन ये महात्माओं का गुण है कि हर प्रकार के पराजय की परिस्थिति में भी वो विजय उत्पन्न कर लें। तो इसलिए 1968 में प्रभुपाद की इच्छा थी कि न्यू वृंदावन में 7 मंदिर और 12 वन बने, 12 फॉरेस्ट। 1972 में उन लोगों ने स्थापना की राधा गोविंद देव का कॉर्नर स्टोन। गोविंद देव मंदिर का कंस्ट्रक्शन न्यू वृंदावन में 1972 में स्टार्ट होने वाला था, लेकिन 1972 में ही भक्त लोग प्रभुपाद के पास गए और बोले, आप वृंदावन का रेप्लिका बनाने आप हमको बोल रहे हो, लेकिन हम लोग तो कोई वृंदावन गए नहीं, तो हम लोग कैसे रेप्लिका बनाएंगे। अगर आप यहां बैठकर हमको डायरेक्शन दोगे, जो वृंदावन के बारे में जानता है वही तो गाइडेंस कर सकता है वृंदावन कैसे बनाना है, इसलिए आपका यहां न्यू वृंदावन में बैठना जरूरी है, तब यह बनेगा। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है मैं रहूंगा। तो भक्त लोगों ने उस समय प्रभुपाद के न्यू वृंदावन में रहने के लिए घर बनाना आरंभ किया, जिसका नाम हो गया पैलेस ऑफ गोल्ड। लेकिन वो घर इतना आलीशान बनने लगा कि प्रभुपाद 77 में चले गए, घर तैयार हुआ 80 में, और 81 में जब घर खुला वो इतना शानदार था कि उसको देखने के लिए हजारों लोग आते थे, बस टूर आ रहे थे। और आज भी उसका नाम है ताज महल ऑफ द वेस्ट। तो वो घर बनाया था किस लिए? प्रभुपाद के लिए। क्यों? जिससे प्रभुपाद रहे। और क्या बनाए? वृंदावन। घर बना लेट, लेकिन घर इतना हिट हो गया कि घर देखने लोग आने लगे। और दो संत लोग आए दूसरे पंथ के, एक आचार्य थे, वो अपने दूसरे डिसाइपल को देखकर बोलते हैं, अरे क्या मंदिर बनाया है इस्कॉन वालों ने, क्या बिल्डिंग खड़ा किया है, इसको देखने हजारों लोग आ रहे हैं, हम लोग का संस्था भी ऐसे करना चाहिए। वो कौन थे? प्रमुख स्वामी। प्रमुख स्वामी ने अपने असिस्टेंट को बोला हम लोग ऐसे बनाएंगे, और तब से स्टार्ट हो गया। और स्वामी नारायण ने उसके बाद से 1000 मंदिर बना दिए। ध्रुव महाराज की कथा हो गई, हमने इंस्पायर कर दिया, वो आगे बढ़ गए। तो देखिए, सफलता में भी बहुत बड़ी समस्या होती है। सक्सेस ऑल्सो हैज इट्स हैंडीकैप। क्या? व्यक्ति को लगता है कि मेरा आइडिया प्रभुपाद के आइडिया से ज्यादा जोरदार है, कि पैलेस ऑफ गोल्ड इतना हिट हो गया तो वहां के लीडर को लगा कि अरे क्या आइडिया लगाया हमने, चलो, क्योंकि हमारा ये आइडिया इतना सफल हुआ, नहीं तो हजारों की संख्या में लोग क्यों आते, इसलिए हम नेक्स्ट आइडिया लगाएंगे, 7 टेम्पल्स और 12 फॉरेस्ट नहीं बनाएंगे, सिटी ऑफ गॉड बनाएंगे। दूसरी दिशा में निकाल के ले गए गाड़ी। तो देखते ही देखते नाम दिया था उस कम्युनिटी का न्यू वृंदावन, केवल एक कारण से कि वहां 7 मंदिर बन सके। 2018 हो गया, अभी तक नहीं बना है। जनवरी 2018 में न्यू वृंदावन, 19 में न्यू वृंदावन के 15 भक्त लोग आ रहे हैं यहां यात्रा करने, और उस समय न्यू वृंदावन इस्कॉन में वापस 97 में राधानाथ महाराज लेके आए, और इस्कॉन में आते समय राधानाथ महाराज के सामने यही एक प्रस्ताव रखा गया कि अगर इस्कॉन में आप न्यू वृंदावन को लेके आना भी आपका एक दायित्व है। तो जैसे ही 97 में न्यू वृंदावन वापस इस्कॉन में आया, सबसे पहले राधानाथ महाराज ने अपने शिष्य जय गोपाल दास पुणे में उसको भेजा। एमटेक कर रहा था, मास्टर्स आर्किटेक्चर, एम आर्क, जाके दिल्ली में आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से परमिशन निकालो थ्रू पूना यूनिवर्सिटी, 7 मंदिर का ड्राइंग मापने के लिए। तो उनको मास्टर्स प्रोजेक्ट कराया इन दिस, याद है ना सकीशरण। तो जय गोपाल प्रभु उस समय गए थे, और क्योंकि पूना यूनिवर्सिटी का रिक्वेस्ट गया था इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने परमिशन दिया। पूरा मदन मोहन का डिटेल उन्होंने उस समय ड्राइंग निकाल के, एक नक्शा अपने पास रखा, एक नक्शा अमेरिका भेजा महाराज के पास। महाराज ने 3 साल 4-5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और उसको फिर वापस और किसी काम में लोगों ने लगा दिया और मंदिर बनाने नहीं दिया। फिर 2000 से लेके 2003 के बीच में फिर कलेक्शन किया, फिर वो पैसा लिया, फिर और कहीं लगा दिया। तब तक महाराज की भी आशा समाप्त हो गई थी कि कुछ वहां होगा। तो फिर 2009 में फिर महाराज ने यहां पर पुश करना स्टार्ट किया कि चलो हम लोग यहां पर कुछ करते हैं, प्रभुपाद का वो स्वप्न वहां तो कभी पूरा नहीं होने वाला, कम से कम यहां पूरा करते हैं। और ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने में भी कोई कम संघर्ष नहीं थे। 88 से 96 के बीच में 200 लैंड ढूंढा है लोगों ने, तलेगांव वलेगांव में भी जाके ढूंढा है। उस समय 96 में दौंड में खरीदा लैंड, 4 साल चला, उसके बाद भक्त लोग उसको छोड़कर निकल गए। फिर 3 साल हम लोग झक मार रहे थे और 200-300 हम लोग लैंड ढूंढे, टोटल 400-500 लैंड महाराष्ट्र में देखने के बाद फिर ये लैंड मिला है। 2003 में लैंड लिया, केवल एक छोटा सा वो किचन का वो जगह था जहां पर सनत कुमार प्रभु और नंदन प्रभु रहते थे, और चारों तरफ कोबरा सांप और जंगली सुअर घूमते थे, और जंगली सुअर डरते थे तो केवल नंदन के खर्राटे से, वही एक सिक्योरिटी था। और ट्रक का वो लोग लिफ्ट ले लेके मंदिर में जाते थे। और तब जाकर फिर महाराज ने फिर विचार किया कि 2006 में जब कुछ नहीं था, यहां पर जंगल ही था, तब मिलान बाग को भेजा था महाराज ने, मेरे को बोला हमको वृंदावन फॉरेस्ट के लिए डायोरामा बनाना है। हमने कहा अरे वृंदावन फॉरेस्ट क्या, यहाँ तो पूरा ही फॉरेस्ट है। वो वृंदावन फॉरेस्ट का बोले नहीं भविष्य में बनेगा। भविष्य में? कब भविष्य में, कहाँ बनेगा? बोले वाड़ा में। वाह, अरे वहां तो वो तो केवल जंगल है। बोले नहीं, वहां बनेगा। तो 2006 में मिलन बाग को भेजा, तो जहां धेनु का वो गधा लोग है ना, उसके पीछे उनका पूरा एक शेड बना था, वहां बैठ के वो लोग ने बनाया। वो भी बहुत कंप्लेंट किया, बोला यार मैं तो कृष्णनगर नवदीप गांव से आया शहर में रहने के लिए बंबई, वापस गांव में भेज रहा तुम। हमने कहा 6 महीने 1 साल के करना पड़ेगा। तो 1 साल बैठ के उन्होंने बनाया। कितना सेट? 2 सेट, क्यों? उस समय पैसा नहीं था। तो महाराज ने कहा न्यू वृंदावन को 1 सेट बना के हम लोग उसको बेच देंगे। तो 2 सेट बना, 2 सेट बनाने के बाद न्यू वृंदावन को हम नहीं खरीदेंगे, तो दोनों सेट गोडाउन में पड़ा रहा। तो देखिए लीडर का अर्थ क्या होता है, लीडर का अर्थ होता है कि वर्तमान में कितने भी चुनौती होने पर वो भविष्य का सपने देखने में डरता नहीं। कभी कभी वर्तमान इतना भयावह होता है कि हम लोग भविष्य का सपना देखना ही भूल जाते हैं, लेकिन वर्तमान में चाहे कितने ही चुनौती हो, हमारे वर्तमान की चुनौती हमें अपने भविष्य के योजनाओं से कभी दूर नहीं करनी चाहिए। तो ये मैंने देखा कि तब न धन था, न लोग थे, न किसी का मूड था। अभी भी बहुत लोगों का मूड नहीं है, लेकिन फिर भी उनके दिल में जो सपना है उसको उजागर करके चल रहे हैं। न गुरु न चेला, हम चले अकेला। तो एक समय तो कोई आने के लिए तैयार नहीं, कुछ नहीं। तो मैं बोला महाराज न कांग्रेगेशन को इंटरेस्ट है, न ब्रह्मचारी को इंटरेस्ट है, न फाइनेंस कमेटी को इंटरेस्ट है, न इस्कॉन में और किसी को इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट वाले केवल आप हो, आप भी भूल जाओ तो सबको शांति हो जाएगी। वो बोले नहीं, अगर हम प्रभुपाद को मिलेंगे तो प्रभुपाद जी आशा किससे करेंगे, उनका जो न्यू वृंदावन का सपना पूरा करना हो तो ऐसे मंदिर से थोड़ी आशा करेंगे जहां पुजारी का सेवा करने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं, जहां राजभोग का कुकिंग करने के लिए आदमी नहीं, जहां अगले महीने का खर्चा कहां से आएगा उसके लिए भीख मांगना पड़ रहा हो। तो ऐसे चुनौती वाले मंदिरों से थोड़ी अपेक्षा की जा सकती है इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने। भगवान की दया से हमारे पास धन भी है, लोग भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं। अगर भगवान ने कुछ दिया और जब देने पर आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के अगले लेवल पे नहीं जाओगे तो जो दिया है उसको भी खींच लेंगे। तो इसलिए भक्ति का अर्थ है यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली गोइंग बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, निरंतर संघर्ष करते रहना, तब जाकर फिर उस संघर्ष में कई लोग जुड़ गए। तो ये उस समय का जो सपना है उसको लेके चले। और वो वृंदावन फॉरेस्ट को जो डायरामास आप देख रहे हो आज 2006 में कंप्लीट हुआ, गोडाउन में 10 साल धूल खाया, 2016 में बाहर निकला वो। और जब नए नए ब्रह्मचारी आए वो लोग आके पूछते क्या पड़ा है अंदर, क्या पड़ा है गोडाउन में, अजीब अजीब वो फाइबर का क्या है वो, मैं उनको क्या बताऊं। पहले बाकी सब तैयार करो, बाद में जब समय आएगा बताएंगे। तो इसलिए हर वस्तु का, हर व्यक्ति का अपना सेवा का अपना टाइमलाइन होता है और समय से पहले कभी कुछ होता नहीं। तो पांचवें स्कंद में ऐसे सत्संग की महिमा का विस्तृत वर्णन आया है और कई कथाओं में हम पांचवें स्कंद में जैसे नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन में कह रहे हैं कि सत्संग छाड़ी कैनु असते विलास, जैसे ही सत्संग छूटेगा असत में मन धावमान होगा। और पांचवें स्कंद में भरत महाराज की कथा में ये कितना स्पष्ट होता है कि महाभागवत के स्तर पर भी व्यक्ति जब अकेला रहे और सत्संग से दूर हो तो उसका मन भटक सकता है। ते कारणे लागिलुये कर्म बंद फास, विषय विषम विष सतत खाइनु, गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु। और जैसे असत में जाएगा मन, अलग अलग प्रकार के इंद्र तृप्ति के कार्य में वो लग जाएगा और तत्पश्चात गौर कीर्तन में मन मग्न नहीं हो पाएगा। केनोवा अच्छे प्राण की सुख पाया, तो कहते हैं कि इस प्रकार के असत का जीवन पाकर मैं तो मानव जीवन प्राप्त करके भी बर्बाद किया, इससे अच्छा तो शरीर त्यागना ही है। तो उसी प्रकार प्रियव्रत महाराज सर्वस्व परित्याग कर बैठे हैं और तब अचानक संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रशासन में एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। नारद मुनि के पास बैठकर वैराग्य का मार्ग धारण करते हुए प्रियव्रत महाराज बैठे हैं, तब स्वयंभुव मनु को पता पड़ता है कि अब ब्रह्मांड के सेना नायक कोई नहीं बचे, साम्राज्य कौन संभालेगा। और इस परिस्थिति को देखकर स्वयंभुव मनु ब्रह्मा जी को अपने साथ लेकर चलते हैं और साक्षात नारद मुनि के पास, क्योंकि ब्रह्मा जी को लगा कि मैं स्वयंभुव मनु को लगा कि मैं अकेला जाऊंगा तो हो सकता है नारद मुनि मेरी बात की उपेक्षा कर दे, लेकिन ब्रह्मा जी को साथ में लेके चलूंगा तो हमारे प्रस्ताव में कुछ शक्ति होगी, गंभीरता होगी, इसलिए ब्रह्मा जी को वो साथ लेके गए। अब प्रियव्रत के मन में रंच मात्र इच्छा नहीं थी कि वैराग्य के मार्ग को छोड़कर अन्य कोई प्रशासन का कार्य करे, वो तो शास्त्र के भावनाओं में पूरी तरह रमे थे, शास्त्र में ही गोते लगा रहे थे, शास्त्र में ही आनंद पा रहे थे। नारद मुनि के चरणों में बैठकर उनके मुखारविंद से कथा सुनते हुए वैराग्य के चमचमाते हुए दीपक की ओर वो निरंतर दृष्टिपात कर रहे थे, उनके मन में साम्राज्य को धारण करने की कोई इच्छा अभिलाषा नहीं थी। लेकिन यहां पर श्रीमद् भागवत फिर उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है कि भक्ति का अर्थ है कि हम अपने इच्छाओं को तिलांजलि दें और महान संतों के इच्छाओं को सर्वोपरि मानकर उन इच्छाओं के विशाल पर्वतीय शिलाओं के ऊपर अपनी इच्छाओं के बवंडर को और लहरों को टूटने दें और तब जाकर यहां पर प्रिव्रत महाराज को स्वयंभू मनु और उनके साथ साथ ब्रह्मा जी ने मिलकर समझाया कि आपका अभी कर्तव्य बनता है कि आप हमारे साथ चलिए और साम्राज्य संभालिए। और बड़ा विस्तृत ये चर्चा का विषय है, लेकिन संक्षेप में यही बताऊंगा कि प्रिव्रत महाराज ने सोचा कि चलो मुझसे ये महान संत लोग निवेदन कर रहे हैं, मेरा कर्तव्य बनता है उसको पालन करना। तुरंत तैयार हो गए और प्रिव्रत महाराज साम्राज्य संभालने लगे और जिस उत्तरदायित्व के साथ, गंभीरता के साथ, लगन के साथ उन्होंने वो कार्य किया, ये बड़ा ही प्रशंसनीय था। और प्रिव्रत महाराज एक आदर्श गृहस्थ का जीवन व्यक्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण के स्मरण को अपने हृदय का आधार स्तंभ मानकर वो अन्य बाकी क्रियाओं को अपने जीवन में उतार रहे थे। तो इसलिए प्रिव्रत महाराज की जीवनी बहुत आदर्श मानी गई है, क्योंकि हम सभी को अपने जीवन के भौतिक कार्यों को संपन्न करना है। तो इसलिए इस कथा के माध्यम से वैराग्य की वास्तविक परिभाषा दी जा रही है। प्रिव्रत महाराज ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली वैरागी नारद मुनि के सानिध्य में थे, वैराग्य के आश्रम में स्थित थे। स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी आकर उनके वैराग्य के जीवन से उनको उठाकर, उखाड़कर उनको प्रशासन के जीवन में डाल दिया। तो प्रश्न उठता है कि क्या प्रिव्रत महाराज का वैराग्य भंग हुआ? भागवत उत्तर देता है कि नहीं, प्रिव्रत महाराज ने एक ऊंचे स्तर का वैराग्य प्रदर्शन किया। उन्होंने ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु के इच्छा को अपनी इच्छा मानकर अपनी निजी इच्छा का वैराग्य दिखा दिया। तो इसलिए भागवत बारंबार इस बात को पुष्ट कर रहा है कि वैराग्य का अर्थ वेशभूषा नहीं, वैराग्य का अर्थ कोई सामाजिक औपचारिकताओं को समाप्त करना नहीं, वैराग्य का मूल अर्थ है कि अपने निजी इच्छाओं को क्षण भर में परित्याग करने का हर प्रकार से प्रयास। तो इसलिए यहां पर प्रिव्रत महाराज बहुत बड़े वैरागी के रूप में उनकी स्तुति हुई है। और इसलिए प्रभुपाद जी जब भुवनेश्वर में थे तो गौर गोविंद महाराज, ये कथा बताते हैं कि गौर गोविंद महाराज को प्रभुपाद जी उस समय भुवनेश्वर में भागवतम का अनुवाद करने लगाए थे, लेकिन काम बहुत धीरे धीरे धीमे धीमे चल रहा था। तो प्रभुपाद बोले इतना स्लो क्यों, फास्ट करो, उड़िया ट्रांसलेशन करना है भागवतम का। वो बोले इतना मैनेजमेंट का काम लगा हुआ है, मैं कैसे छोड़ूं। तो प्रभुपाद बोले मैनेजमेंट के लिए और किसी को लगा देंगे, आप दूसरे को मैनेजमेंट दो, आप ट्रांसलेशन करो। वो बोले दूसरा कोई है ही नहीं मैनेजमेंट करने। तो प्रभुपाद एक भक्त को जाते हुए देखे, अमेरिकन भक्त, प्रभुपाद बोले इसको मैनेजर बना देंगे। तो गौर गोविंद महाराज बोले मैं नहीं बोल सकता, आप ही बोलो। तो प्रभुपाद उस भक्त को बुलाए, वो भक्त आके प्रभुपाद को प्रणाम किए। प्रभुपाद ने कहा देखिए मेरी इच्छा है कि आप यहीं भुवनेश्वर में रहकर मैनेजर बनो, जिससे कि गौर गोविंद महाराज ट्रांसलेशन कर सके। वो भक्त ने अगले दिन का न्यूयॉर्क का टिकट निकाला था, उसके सर पर तो वज्रपात गिरा, झटका खाया। वो प्रभुपाद को देख के बोलते आप क्या बोल रहे हो, मैं तो कल जा रहा हूं, न्यूयॉर्क जा रहा हूं, और वैसे भी शिला प्रभुपाद इंडिया का वेदर मुझे सूट नहीं करता। प्रभुपाद ने कहा ज्यादा समय रहोगे तभी सूट करेगा। तो बोले अरे बाप रे अभी क्या बोलूं। तो कहता प्रभुपाद जी यहां मैं जो कुछ भी खाता हूं ठीक से पचता ही नहीं। प्रभुपाद ने कहा चिंता मत करो, मैं सब लिख के दूंगा क्या खाना है क्या नहीं, बराबर खाओ सब पचेगा। फिर कहता प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में मेरे लिए एक नया डिपार्टमेंट वो लोग ने चालू किया है, उसको टेक ओवर करने जाना है। प्रभुपाद ने कहा चिंता मत करो, दूसरे डिवोटी को मैं भेज दूंगा वहां टेक ओवर करने, तुम यहीं बैठो। अब वो सर खोजना लगे अभी क्या करें। तो बोले प्रभुपाद जी मेरा लोकल जीबीसी के साथ जमता ही नहीं है, जो लोकल जीबीसी है उसका और मेरा पटता ही नहीं। प्रभुपाद ने कहा आज ही मैं जीबीसी बदल देता हूं। ये ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं हुआ। तो बोले अब फाइनली क्या। तो बोले प्रभुपाद जी यहां बैठे बैठे मैं इतना बिजी रहता हूं सुबह शाम 16 माला नहीं हो पाता, न्यूयॉर्क में जाऊंगा आराम से माला करूंगा। प्रभुपाद ने कहा अगर पूरा दिन लगे हो 16 माला नहीं भी होता चलता है, सेवा में ही तो लगे हो, कोई बात नहीं बैठो यहीं पे। तो प्रभुपाद ने जबरदस्ती उनका प्लान बदल दिया और फिर वो वहां रहे और मैनेज किए। तो इसलिए यहां देखा गया है कि कई बार भक्ति के संग में, भक्ति के मार्ग में अगर आगे बढ़ना हो तो भगवान जब कहते हैं अर्जुन को सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जो परित्यज्य है वो महान वैष्णव, वैष्णव सत्संग और वैष्णव समुदाय के आदेशानुसार हम उसको बदलने का प्रयास करें। प्रियव्रत के फिर आगे वंशज अग्निध्र और उसके आगे महाराज नाभि, और महाराज नाभि सुंदर सुंदर यज्ञ करने के लिए बड़े प्रसिद्ध हुए और उसमें भगवान श्री विष्णु स्वयं साक्षात उपस्थित होकर यज्ञ को स्वीकार करते थे। फिर उसके आगे उनके वंशज हुए महाराज ऋषभदेव। ऋषभदेव एक उत्तम कोटि के राज ऋषि थे जिनके अंदर हर प्रकार के गुण उत्पन्न थे, और उनके 100 पुत्र हुए और ऋषभदेव महाराज ने उन 100 पुत्रों को संदेश दिया, और उन संदेशों में बड़ा प्रसिद्ध संदेश है नायम देहो देह भाजान रलोके कष्टान कामान अर्हति विड़ भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्धेन सत्मात ब्रह्म सौख्यम तू अनंत। कि देखिए आप मानव जीवन प्राप्त किए हो, मानव जीवन प्राप्त करके केवल इंद्र तृप्ति के आधार पर जीवन जियोगे तो ये तो विष्टा खाते हुए शुकर कुकर की भांति हो जाएगा। तो इसलिए आप इस मानव जीवन में ऐसे अपने बहुमूल्य मानव जन्म को व्यर्थ न गंवाएं। प्रभुपाद जी अपने कुछ शिष्यों के साथ अमेरिका में कहीं गाड़ी में जा रहे थे, तभी अचानक भक्तों ने देखा कि कुछ बाहर के नवयुवक नवयुवती एक कीचड़ के तालाब में कई सुअरों के साथ खेल रहे थे, कीचड़ उछाल रहे थे सुअर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर। उसको देख के एक भक्त ने कहा प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद जी ऐसे करतूत ये लोग कर रहे हैं, अगला जन्म उनको सुअर का मिलेगा ना। तो प्रभुपाद ने कहा अगला जन्म क्यों, अभी भी सुअर ही तो है। कष्टान कामान अर्हति विड़ भुजाम ये, मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ऋषभदेव महाराज के शिक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं। हाँ प्रभुपाद जी कई बार इनको कोट किए हैं और इनके ऊपर लेक्चर सीरीज भी प्रभुपाद जी के काफी हुए हैं। और मुझे याद है सबसे पहला हम लोग का नित्य कृष्ण प्रभु के साथ हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट किए 1994 में सायन में हनुमान मंदिर में। तो 93 दिसंबर में ज्वाइन हुआ था मैं, 94 में हम लोग सितंबर वगैरह में हम लोग कारकला गए थे, और उसके बाद वहीं पर हम लोग चर्चा करने लगे। तो नित्य कृष्ण प्रभु ने मुझे प्रस्ताव दिया सायन में एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। एक हनुमान मंदिर है, वहां से मुझे ऑफर आया है प्रोग्राम के लिए। तो मैंने कहा नित्य कृष्ण प्रभु को, अरे मैं तो बिल्कुल न्यू डिवोटी हूं। तो नित्य कृष्ण प्रभु बोले मैं भी नया हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ करेंगे। तब हम लोग वहीं पर हनुमान मंदिर में प्रोग्राम स्टार्ट किए, और वो मेरा लगभग पहला कॉन्ग्रीगेशन प्रोग्राम था। तो प्रीचिंग में नित्य कृष्ण प्रभु ने हमको ब्रेक दिया। और ये सितंबर का महीना था, तभी हमारा सैफरन भी नहीं हुआ था, उसके बाद अक्टूबर में सैफरन मिला। तो उस समय हम लोग हनुमान मंदिर में प्रोग्राम स्टार्ट किए। तो बॉम्बे शहर में उस समय धीरे धीरे राधानाथ महाराज ने बोला सब जगह प्रोग्राम स्थापित करो, और देखते ही देखते बॉम्बे के कोने कोने में प्रोग्राम्स और प्रचार कार्यक्रम बढ़ा। क्यों? क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक लोग इस प्रकार इंद्र तृप्ति के आधार पर ही जीवन जीते रहेंगे। और उस समय तो इंटरनेट वगैरह था नहीं, तो फिर भी प्रचार करना इतना कठिन नहीं था, लेकिन आज के जमाने में प्रचार करना इतनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपका लेक्चर बैठ के कंटिन्यूअस कौन सुनेगा बिना व्हाट्सएप देखे। फिर आप कोई डेटा कोट करोगे तो तुरंत गूगल पे चेक करेगा। तो ये है कलयुग की जनता। तो प्रचार करना इतना आसान नहीं रहा अभी। तो इसलिए यहां पर ऋषभदेव अब अपने जीवन के अंत में अवधूत के रूप में भ्रमण कर रहे हैं। इतने बड़े राजा, इतने बड़े नरेश, लेकिन ऐसे वैराग्य का प्रदर्शन किया। और तब उन्होंने अपने शरीर के अंत करने से पूर्व बहुत सुंदर सुंदर उनके विषय में श्लोक आया है कि मन को नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। योगिन कृत मैत्रस्य पत्युर्जायव पुंश्चलि, एक श्लोक आता है कि अगर योगी अपने मन को सावधानी से नहीं पकड़े। अब देखिए गौशाला में कल आप लोग जाओगे गोपूजा वगैरह करने के लिए, तो गैया को देखोगे बड़ी सींग वाली, लेकिन आपको देखकर धीरे से आपके पास आएगी, आप सहलाने लगोगे, लेकिन चाहे कितना भी प्रेम करते हुए आप उसको सहलाओ, सावधान रहना, क्योंकि वो गाय हो या खासकर बैल, कब अचानक लपक के एक सींग मार देगी कोई भरोसा नहीं है। और ऐसा नहीं कि वो क्रोध में मार रहे हैं, उनके लिए वो हरि बोल है, हरि बोल। लेकिन उनके हरि बोल से आपका हरि बोल हो जाएगा, एक हफ्ता अस्पताल में जाएगा। तो इसलिए कहते हैं जिस साधक ने साधना करते हुए अपने मन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जैसे पशु अचानक सींग मार दे और आपको घायल कर दे, वैसे ऐसे योगी और साधक का मन उसको कभी भी सींग मार के घायल कर देगा। तो ये ऋषभदेव के उस समय ये वाले सेक्शन में वो श्लोक आता है। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी है भक्ति करते समय। तत्पश्चात ऋषभदेव अंत में अपने हर प्रकार की भौतिक क्रियाओं से उपेक्षा करके बैठ गए, और समय के साथ साथ उन्होंने अपने इस देह को त्यागने का विचार किया। और तत्पश्चात उनके पुत्र, सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भरत। भरत महाराज की विशेषता कि वो इतने बड़े राजा, लेकिन फिर भी सब कुछ छोड़कर वो एकांत में भजन करने गए। और एकांत में भजन करने क्या गए, एक दिन अचानक एक मृग को भागते हुए देखा, एक शेर उसके पीछे लगा था। मृग छोटे से तालाब को क्रॉस करते समय, छलांग लगाते समय अचानक उसका प्रसव हुआ, और उसका छोटा सा मृग शिशु जो नीचे गिरा उसको उठा के ले आए, उसका लालन पालन करने लगे, उसके प्रति करुणा की भावना जागृत होने लगी। तो इसलिए कहा गया है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो इस परिभाषा का हर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां बताया गया है कि देखिए, सामान्यतः आपको लगेगा करुणा भक्ति के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल। करुणा तो भक्ति के लिए अनुकूल है, लेकिन यहां पर भरत महाराज के प्रसंग के माध्यम से बताया गया है कि अगर वैष्णवों का सत्संग किसी को प्राप्त नहीं होगा और वैष्णवों का क्षण क्षण मार्गदर्शन आपको प्राप्त नहीं, तो करुणा भी आपके लिए माया का रूप धारण कर सकता है। तो इसलिए विशेष रूप से महाभागवत के स्तर से भी कोई व्यक्ति का पतन हो सकता है। तो कभी कोई नहीं कह सकता मैं तो इतने स्तर पर आ गया, मुझे कौन क्या एडवाइस देगा। नहीं। तो इसलिए महाभागवत के स्तर से भी अगर हम आसक्त हो गए किसी वस्तु से करुणा के कारण, तो इसलिए कहते हैं दो प्रकार के खतरे हैं। एक दक्ष प्रजापति के कथा में हमने सुना क्या था, द्वेष, है कि नहीं। द्वेष मीन्स आई हेट यू, और करुणा मीन्स आई लव यू, दोनों माया है। तो इसलिए दक्ष प्रजापति फंसे आई हेट यू में और भरत महाराज फंसे आई लव यू में। तो इसलिए हमको दोनों से बचना है। हमको चाहिए कि कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को नियमित रखें। और इसलिए वैष्णव सत्संग चाहिए जो हमें ना दक्ष बनने देगा ना भरत बनने देगा। क्योंकि भरत महाराज जब धीरे धीरे उस मृग के प्रति आसक्त होने लगे, वो मृग का ही चिंतन करने लगे, तो बाकी सभी लोग कोई थे ही नहीं बताने उनको। धीरे धीरे उनकी साधना नष्ट हो गई और दिन रात जो कुछ वो भगवान को करते थे वो उस मृग को ही करने लगे। तो इसलिए एक बार प्रभुपाद एक भक्त के घर पर गए। वो भक्त के घर पे ऑल्टर पर एक सुंदर युवती का फोटो था। प्रभुपाद बोले ये क्या है, ऑल्टर पे रखा है फोटो लड़की का। वो बोला क्या करें, भक्ति के आने से पहले मैं इससे बड़ा प्रेम करता था और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इसे विवाह करूं, लेकिन कुछ समय के बाद वो मुझे छोड़कर और किसी के साथ भाग गई। मेरा हृदय टूट गया और मैं पूछने लगा मैं कौन हूं। और तब भक्त लोग मिले, गीता पढ़ा, मैं समझ गया, आपका शिष्य बन गया, आप मेरे गुरु बने, इसलिए मैं इसको अपना गुरु मानता हूं, क्योंकि इसके कारण मुझे आप मिले, ये हमारी गुरु है। तो प्रभुपाद ने कहा ये भाव ठीक है लेकिन ऑल्टर पर रखने की जरूरत नहीं है, इतना भी सम्मान मत दो। तो इसलिए भरत महाराज की कथा बहुत मार्मिक है और उनका ध्यान भंग होने का आरंभ का कारण था। उनको लगा आई एम योर सेवियर, मैं तुमको बचाऊंगा। इसलिए दशम स्कंद में हम देखेंगे जब पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास जाती है और कहती है ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। ब्रह्मा जी ने यह गलती नहीं की, क्योंकि कभी कभी हम बहुत लोगों को जब बचा लेते हैं और बहुत सफल कार्य कर लेते हैं, हमको लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन सेव एनीवन। और भरत महाराज को लगा मैं इनको संरक्षण दूंगा। लेकिन हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो अपने बलबूते पे नहीं, हम केवल एक पारदर्शी निमित्त बन रहे हैं कृष्ण के लिए। हमारे माध्यम से कृष्ण को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कृष्ण उनका उद्धार कर रहे हैं, हम नहीं। तो इसलिए हिरण्यकश्यपु ने अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए उनको लगा आई एम द डूअर, भरत महाराज को उद्धार करने में लगा आई एम द डूअर, मैं इस मृग का उद्धार करूंगा, आई विल डिलीवर दिस डियर, और उसमें वो फंस गए। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि ब्रह्मा जी जब पृथ्वी देवी उनके पास आई तो ब्रह्मा जी ने कहा यह तो बड़ी आपातकालीन परिस्थिति है, इसका समाधान मेरे पास नहीं, चलो हम लोग सभी भगवान के पास जाते हैं। और वो भी ब्रह्मा जी अकेले नहीं गए। कभी कभी जब हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, हम दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहते कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए चुपचाप उसको सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को इकट्ठा किया, सब देवताओं चलो मैं भी फेल हो गया, मैं भी पृथ्वी देवी का समस्या समाधान नहीं कर पाया, हम लोग सब निस्सहाय होकर निर्लज होकर नम्र होकर भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि आप ही कुछ कीजिए। तो इस प्रकार की भावना आवश्यक है। तो इसलिए भक्ति में आना तो कठिन है, लेकिन भक्ति में आने के पश्चात दूसरों को भक्ति में लाकर उनके भक्ति में बनाए रखना और अधिक कठिन है। तो इसलिए जो भी प्रीचर काउंसलर गुरु इत्यादि का रोल धारण करते हैं उनको भरत महाराज के इस कथा से बहुत सावधानी शिक्षा लेनी पड़ेगी। किसी को नहीं सोचना चाहिए हम इनका उद्धार करेंगे, आई एम योर सेवियर। तो ये दो प्रकार के द्वेष हैं। पहला द्वेष है आई एम द डूअर, दूसरा द्वेष है आई एम द सेवियर। तो ये दोनों से हमें बचना है। और ये भरत महाराज अंत में ऐसी अवस्था हुई, जो व्यक्ति महाभागवत के स्तर पर थे, निरंतर भगवान की पूजा करते थे, वो मृग गायब हो गया। तो इस प्रकार के श्लोक आते हैं जैसे गोपियों ने कृष्ण के विरह में गाया, वैसे उस मृग के अनुपस्थिति में वो बोलने लगे, चिल्लाने लगे। अर्थात हमारा मन कच्ची मिट्टी की तरह है, जैसा उसके ऊपर स्पर्श होगा वैसा ही रूप वो धारण कर लेगा। अगर निरंतर भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण तत्व का छाप उस पर नहीं गिरा तो अधिक समय नहीं लगता अन्य किसी विषय का उस पर छाप लगने और वो अंकित होने। इसलिए निरंतर प्रयास करना चाहिए ये छह तत्व का ही छाप हमारे मन के पर्दे पर अंकित हो, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व आर। तो भक्त को चाहिए कि वैष्णव सत्संग में निरंतर ये छह तत्व को अपनाना चाहिए। इसलिए वैष्णव सत्संग का अर्थ नहीं कि इतने नंबर लोग एक साथ आ गए, वैष्णव सत्संग अर्थात दो लोग भी आपस में आए तो फिर वो लोग आपस में कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व आर, ये छह को छोड़कर और कहीं पर घूमेंगे वो माया के प्रपंच में भरत महाराज की तरह फंसेंगे। और इसलिए वो मृग हम सभी के जीवन में कोई भी रूप धारण कर सकता है जो कृष्ण तत्व को छोड़कर, ये छह तत्वों को छोड़कर और कोई भी तत्व हो जिसके प्रति हमारा मन आकर्षित हो जाए। वो कोई स्थूल वस्तु हो सकती है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई विषय हो सकता है, वो कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो कोई अन्य फिलॉसफी हो सकता है जिसके प्रति हमारा मन आकर्षित हो जाए। और फिर हम सोचते हैं मेरा उत्तरदायित्व है इसको पालना, इसको पोसना, इसका देखरेख करना। और देखते ही देखते कृष्ण की भावना, कृष्ण के भक्त का वस्त्र धारण करते हुए आंतरिक रूप से मन का पूरा परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि मृत्यु के समय भरत महाराज के वस्त्र वैष्णव वस्त्र ही थे, लेकिन मन के अंदर क्योंकि मृग का छाप था, अगला जीवन वैकुंठ में नहीं मिला, मृग का मिला। तो इसलिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए यह है कि इस्कॉन में हम लोग आए हैं तो हमको समझना चाहिए कि वैष्णव सत्संग अर्थात सेवा, ये छह तत्वों को लेकर संबंध। और अगर हम वैष्णव सत्संग में आकर सोचें ये कम्युनिटी नहीं क्लब है, तो क्लब मेंटेलिटी मतलब क्या, बस एक दूसरे के साथ प्रजल्प करना, यहां पर आकर केवल मैं अपना अपनी योजना कैसे पूर्ण करूं इसके विषय में चर्चा करना, हर प्रकार के दूसरे बिजनेस की बातें, यहां की बातें, वहां की बातें, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो दो लोग मिलेंगे तो समाज से संबंधित चर्चा अवश्य करेंगे। लेकिन इन चर्चाओं की क्या सीमा होनी चाहिए, इसका अनुसंधान नहीं रहा तो भरत महाराज की तरह हम भी प्रपंच में फंसेंगे। प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडंबयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रतितुम प्रभो। तो कहा गया है कि इस प्रपंच से मुक्त होने के लिए भगवान निष्प्रपंच रूप में आते हैं, अपने सच्चिदानंद घन, ज्ञान घन, आनंद घन रूप का हम लोग के सामने सुंदर प्रसारण कर ध्यान आकर्षित करते हैं। अगला, भरत महाराज जड़ भरत का रूप धारण करते हैं। जड़ भरत के रूप में काली माता के सामने उनको जब मारने का प्रयास किया जाता है, उनके महान, एक तो मृग का रूप धारण किया, मृग का रूप धारण करने के बाद फिर जब जड़ भरत का रूप धारण करते हैं, जब उनको कोई सामान्य बेवकूफ मानकर उनको सर काटने का प्रयास करते हैं, तो दुर्गा देवी स्वयं उनका संरक्षण करती है और सारे डकैतों को मारकर उन डकैतों के स्वरों को उठा उठा के खेलने लगती हैं। फिर जड़ भरत चलते हुए जाते हैं, कोई राजा के लोग उसको पकड़कर पालकी उठाने लगा देते हैं, रघुवन महाराज की पालकी, और फिर धरती पर वो देखते हैं कुछ चींटियों को, तो जड़ भरत के मन में उन चींटियों के प्रति सम्मान की भावना रहती है, उनके जान को बचाने के लिए वो अपना कुछ पग आगे से पीछे करते हैं, दाएं से बायां करते हैं, केवल दिशा बदलते हैं, उसके कारण बाकी तीन लोग हिल जाते हैं और रघुगण महाराज चिल्लाकर बाहर आकर कहते हैं, कौन है वो मूर्ख जो ये कार्य कर रहा है। और तब जड़ भरत कहते हैं, कौन मूर्ख है, आत्मा तो नित्य शाश्वत अमर है और शरीर तो मरा हुआ है, तो मूर्ख कह रहे हो किसको। तो रघुगण महाराज समझ गए, ये कोई सामान्य मजदूर नहीं हो सकता, सामान्य मजदूर इतना तत्वज्ञान कैसे जाने। तो फिर दोनों के बीच चर्चा आरंभ होती है और चर्चा लंबा समय चलती है और दो तीन अध्याय बड़ा सुंदर जड़ भरत महाराज रघुगण को टीचिंग्स देते हैं। आगे जड़ भरत टीचिंग्स टू रघुगण, कैसे आत्मा शरीर से भिन्न है, मन ही हमारे भौतिक प्रपंच का कारण है और भक्ति से इसका पूर्ण विजय प्राप्त करना है, और एक पूरा फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट करके चैप्टर है जो कि बड़ा जोरदार विवरण है, जिसको लेकर देवामृत महाराज ने एक सुंदर बुक भी लिखा उसको लेकर। तो इस तरह यहां पर ये विस्तृत वर्णन जड़ भरत रहोगण को महाराज को करते हैं। रहोगणेत तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर विना महत्पाद रजोभिषेकम्। तो रहोगण महाराज जड़ भरत को कहते हैं कि वास्तव में चाहे कितनी भी तपस्या, कितना तप, यज्ञ, दान, पुण्य, स्नान, वेद अनुष्ठान इत्यादि का पालन कर लो, लेकिन जब तक महात्माओं के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण नहीं करेंगे और उससे अपने चित्त वृत्ति को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक जीवन में प्रगति संभव नहीं। विना महत्पाद रजोभिषेकम्, महात्माओं के चरण रज का अभिषेक करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जड़ भरत जितने महान संत थे, क्योंकि पूर्व जन्म के भक्ति का परिणाम उनके हृदय में अभी भी था, तो इसलिए जड़ भरत दिखने में सामाजिक दृष्टि से मूर्ख लग रहे थे, लेकिन वास्तव में बड़े पारंगत विद्वान थे। क्यों? क्योंकि भरत महाराज के रूप में जो उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति की थी, नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, वो भक्ति के किए गए कार्य हमेशा हमारा साथ देते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं, भक्तों को कभी एक दूसरे के साथ अनुकरण नहीं करना चाहिए और तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर भक्त अपने अपने जीवन में पूर्व जन्म के क्रियाओं के अनुसार भक्ति करते हुए आया है। तो इसलिए किसी ने 100 जन्म, किसी ने 1000 जन्म, किसी ने 10,000 जन्म भक्ति की हो तो दो व्यक्तियों की तुलना नहीं की जा सकती। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पर थे, उनके शिष्य नंद कुमार जी उनके पीछे पीछे चल रहे थे और पीछे पीछे उनके एक कुत्ता लग गया और कुत्ते को देखकर वो घबरा गए और कुत्ते को भगाने का प्रयास किया, कुत्ता और रफ्तार से भागा। तो नंद कुमार प्रभु भागे भागे प्रभुपाद के पास है, बोले बचाओ बचाओ बचाओ। और सब भक्त लोग मुड़ के देखे, बीच पे मॉर्निंग वॉक पे थे और देखे बड़ा अद्भुत दृश्य, कुत्ता भगा रहा है और नंद कुमार जी आगे आगे भाग रहे हैं, उनकी धोती शिखा सब उड़ रही है। तो सब हंसने लगे कि ये क्या चल रहा है। और तब प्रभुपाद जी के पास नंद कुमार प्रभु आए, बोले क्या हुआ क्या हुआ प्रभुपाद। प्रभुपाद ने पूछा उनको, तो बोले दिखा देखा थोड़ा ये कुत्ता पीछे लगा हुआ है। प्रभुपाद जी गंभीरता पूर्वक कुत्ते को देखे, थोड़ा झुके, सर के ऊपर अपना हाथ उठाया, छड़ी उठाया, झुकने के बाद कुत्ते के आंखों में आंख मिलाकर प्रभुपाद जोर से चिल्लाए, हट। अब अंग्रेजी कुत्ते ने देसी गाली कभी सुनी नहीं थी, पहली बार वो देसी गाली सुन रहा था, तो इतना झटके से बैठ गया और अपना दुम दबा के वहीं पर। और इसको देखकर भक्त लोग और प्रभावित हो गए कि प्रभुपाद जी कुत्ते को भी कंट्रोल कर लेते। और फिर वही 2 साल बाद नंद कुमार प्रभु प्रभुपाद के लिए चपाती बना रहे थे राधा गोविंद मंदिर में, वहां एक गेस्ट हाउस में, अचानक विंडो के अंदर से एक बंदर घुस गया। और बंदर जैसे ही घुसा, इनको लगा मुझे टेक्निक पता है, हाथ में चपाती की लाटनी उठाई, बंदर को देख के बोला हट। बंदर एक बर्तन उठाया, दे मारा। वो भागे भागे प्रभुपाद के पास आए, बोले अरे मैंने तो वही टेक्निक अपनाया लेकिन हुआ नहीं। प्रभुपाद ने कहा तुमने देखा लेकिन समझा नहीं, जो एक व्यक्ति करे वो दूसरा नहीं कर सकता, उसका परिणाम सेम नहीं होगा। और राधानाथ महाराज अपनी यात्रा में बीच बीच में पूछते हैं शैल आई कंटिन्यू, वो हम और आप नहीं कर सकते। एक हमारा ब्रह्मचर्य यात्रा में ट्राई किया, मॉर्निंग में बहुत लंबा लेक्चर के बाद बोला शैल आई कंटिन्यू, कांग्रेस बोला नो वी वॉन्ट प्रसाद। तो इसलिए यहां कह रहे हैं जड़ जड़ भरत जो भी थे, आपको अपना वैष्णव शिष्टाचार पालन करना है, और ये नहीं कि शिष्टाचार भंग करो और कोई पूछो क्यों कर रहे, बोले जड़ भरत, हम भी जड़ भरत बन गए, नहीं। तो इसलिए 5वें स्कंद को आगे बढ़ाते हुए, अब 5वें स्कंद का सबसे जटिल जो तत्व वो आता है, वो है ब्रह्मांड के भूगोल का दर्शन। इसका वर्णन क्यों आया है, ये बताने के लिए कि हर जीव के अपनी निजी इच्छा है। बेसिकली 16वें अध्याय से लेकर ये जम्बू द्वीप पर के जो लिखा हुआ है 16वां चैप्टर, तो 5वें स्कंद का 16वां अध्याय से लेकर 25वें अध्याय हेलिश प्लैनेट तक, ये है यूनिवर्सल टूरिज्म। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है ना, तो अभी गोवर्धन इको विलेज भी टूरिज्म सर्किट में एक्टिव है, तो मैं भी बहुत सारे टूरिज्म के कॉन्फ्रेंस में कई बार जाता हूं। तो उन लोगों का यही रहता है प्रयास, कितने टूरिस्ट आए, समझ रहे ना। तो अभी इंडिया का पॉपुलेशन 122 करोड़ है और इंडिया में मान लो 1200 मिलियन पकड़ो, और इंडिया में केवल अभी 11 मिलियन टूरिस्ट आते हैं साल के। अब मैं केवल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड उसका पॉपुलेशन है 1.5 मिलियन और उनमें टूरिस्ट आते हैं 4.5 मिलियन, समझ रहे हैं क्यों आते हैं, देखने के लिए। तो इसलिए आप बंबई एयरपोर्ट पे जाओ तो आपको बड़े बड़े आपको टूरिज्म के एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, फ्लाई न्यूयॉर्क, फ्लाई सिंगापुर, जैसे न्यूयॉर्क लैंड करोगे वहां बिलबोर्ड रहेगा फ्लाई मुंबई, मतलब यहां वाले को प्रेरित करते वहां जाओ, वहां वाले को प्रेरित करते यहां जाओ, ये टूरिज्म है। तो इसलिए आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तु कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते, उस एक श्लोक का विस्तार पांचवें स्कंद में या ग्यारह अध्याय में हो गया कि लोग कहते ना एक वैनिला फ्लेवर काफी नहीं है क्या, इतने सारे आइसक्रीम के फ्लेवर की क्या आवश्यकता है, क्यों, वैरायटी है कि नहीं, वैरायटी चाहिए। अब रेस्टोरेंट में जाओ तो लिस्ट में इतना वैरायटी रहेगा, हम भी रेस्टोरेंट चलाते हैं लेकिन मालूम है पंचतत्व ही है उसमें, पंचतत्व जानते हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का पंचतत्व मालूम है कि नहीं, नहीं मालूम, आलू फ्लावर कैबेज टोमेटो कैप्सिकम, ये पंचतत्व है, इसको लेके 80-90% आइटम उसी से बनता रहेगा, उसका नाम ये देगा नाम वो देगा, ये नाम देगा नाम देगा, अंदर एक टोमेटो सॉस बना के रख लिया, कभी ये डाला कभी उसमें ये डाला कभी ये डाला वो डाला, बस ये वही है और कुछ नहीं। तो ये 11 अध्याय में यही दिया हुआ है कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाओ रूप रंग अलग अलग रहेगा लेकिन हर जगह क्लेश ही है। तो आप डिसाइड करो आप धोती कुर्ता पहन के पिटना चाहते हो या सूट टाई के साथ, चॉइस दिया गया है, यही है ये 11 अध्याय का विषय, चूज योर ड्रेस। पिटना तो है ही, डंडा तो मारेंगे, अब बोलो क्या, सर पे कंबल डालोगे, पगड़ी डालोगे, हेलमेट डालोगे, क्या डालोगे, मारने तो वाले ही हैं। प्रभुपाद जी मेक्सिको में थे, उनका एक भक्त उनकी मालिश कर रहा था, उसको मच्छर काट रहे थे, भक्त बोलता है प्रभुपाद को, प्रभुपाद जी मच्छर मुझे काट रहे हैं लेकिन मैं देख रहा हूं मच्छर आपको नहीं काट रहे क्योंकि लगता है आप प्योर डिवोटी हो इसलिए। प्रभुपाद बोले हो सकता है यहां हो लेकिन कलकत्ता में मच्छर भेदभाव नहीं करते। तो इसलिए ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाओ समस्या तो आएगी ही। तो यहां पर देखिए अगला माउंट सुमेरु, तो अगर आपको ये 11 अध्याय डिटेल में समझना है कि ये ब्रह्मांड का भूगोल क्या है, तो हमारे चौपाटी मंदिर में पावनेश्वर प्रभु हैं, भूगोल के बहुत बड़े आचार्य, उनसे आप विस्तारित रूप से सुन लीजिए कि ये कैसा है। और TOVP जो बन रहा है मायापुर में, TOVP का मंदिर तो बन गया लेकिन अभी भी ये वाला 11 चैप्टर को लेके इस्कॉन में घमासान युद्ध चल रहा है कि एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो कई सारे पार्टीज हैं जो आपस में झगड़ रहे हैं कि एक्चुअली दिस मींस दिस, नो नो इट मींस दैट। तो इसलिए इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे लेकिन एक मेन पॉइंट प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, सन इज क्लोजर देन द मून, इतना बोल के हिला देते थे लोगों को और सारे लोग घबरा जाते थे, व्हाट सन इज क्लोजर देन मून, हाउ इज इट पॉसिबल। प्रभुपाद से संडे कम बिफोर मंडे। तो प्रभुपाद जी बस इसी को लेकर लोगों को भ्रमित करते और फिर प्रभुपाद जी बोलते मून लैंडिंग इश्यू को लेके, वी नेवर लैंडेड ऑन मून। तो एक IIT में हम लोग जब मॉर्निंग साधना कर रहे थे तो मॉर्निंग जपा के बाद एक भक्त उठ के खड़ा होके बोलता है, आज ही मैं मंदिर से आया हूं कल और मुझे मालूम पड़ा कि हम लोग कभी चांद पर गए नहीं। तो मैं उस समय नया था और अपने बाकी लोग भी नए थे, हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ा, बोला ठीक है नहीं गए होंगे क्या फर्क पड़ता है, अपने तो लाइफ में बड़े प्रॉब्लम दूसरे हैं। तो दूसरा एक भक्त खड़ा हो गया, बोला क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो, गए हैं हम चांद पर, आप कैसे बोलते हो नहीं गए हैं, प्रभुपाद ने कहा, आप प्रभुपाद का विरोध कर रहे हो। और दोनों भक्तों के बीच घमासान युद्ध हो गया और चलने लगा मतभेद, आधा घंटा एक घंटा चलने लगा और हमको चिंता होने लगी क्योंकि उसमें जो एक झगड़ा कर रहा था वो हम लोग का ब्रेकफास्ट बनाता था, हमारी सबसे बड़ी समस्या वो थी। तो मैंने कहा भैया चांद पे जो हुआ सो हुआ लेकिन पृथ्वी पे कुछ लोग भूखे हैं, थोड़ा चांद का मैटर बाद में लेते हैं आप चलिए। वो बोलता नहीं जब तक ये चांद का मैटर क्लियर नहीं होगा हम नहीं आएंगे। तो फिर झक मार के हम लोग दो तीन लोग को नीचे उतरना पड़ा और फिर हम लोग का जो उस समय घास लेट का स्टव था बिल्कुल घिसा पिटा, कुरुक्षेत्र के जमाने का लगता था, उसको पकड़कर फिर हमने चालू किया और कुकिंग स्टार्ट किया। मून लैंडिंग एपिसोड से वही याद आता है हमेशा। तो प्रभुपाद जी इस बात को बोले कि ये विशेष रूप से मैं ब्रह्मांड के भूगोल का वर्णन करके भक्तों के हृदय में शास्त्र के शब्दों पर कितनी कितना विश्वास है, यह परीक्षा लेना चाहता हूं। तो इसलिए यहां पर आगे डायमेंशंस दिया गया है, देखिए समझ रहे हैं ना, समझ गया कि नहीं? बिल्कुल, चलो नेक्स्ट, ये समझ गया तो नेक्स्ट वाला दिखाते और समझाएंगे, समझ गए? हाँ बढ़िया लगा कि नहीं? हाँ वो बीच में डोसा है, वो चिंता मत करो। अच्छा, जो डोसा खाने के बाद प्यास लगी, अगला देखो, ये लो जूस पियो। तो ये पूरा डिटेल में आपको मायापुर में एक दिन म्यूजियम के रूप में मिलेगा, तब जाकर समझेंगे। तो मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं, एक दिन बैठकर डिटेल में समझूंगा, अभी तक मैंने भी कष्ट नहीं किया है, क्योंकि समझने का मैं स्टार्ट किया था लेकिन दो पंडितों का आपस में झगड़ा देखकर फिर मैं बोला थोड़ा वेट करते हैं, गलत समझने के बाद मालूम पड़ा गलत समझा, तो कंक्लूजन आ जाने दो फिर समझेंगे। नेक्स्ट दिखाओ, ये देखिए। तो इस तरह से आगे और आगे, ठीक है ना, बिल्कुल जबरदस्त यहां का ऑडियंस है, और आप में से किसी को इसका अगर कुछ कंसल्टेंसी करना है तो पावनेश्वर प्रभु को मिल सकते हैं कि आप क्या समझे ये बताने के लिए। तो इसमें फिर अंत में एक केवल मैं एक श्लोक वर्णन करूंगा जिसमें वर्णन आता है, कल्पायुषात स्थान जयात पुनर्भवात क्षणायुषात भारत भूजयो वरम। देवतागण कह रहे हैं जम्बूद्वीप के निवासी कि हमको इस जम्बूद्वीप और स्वर्गलोक में दीर्घकालीन जीवन नहीं चाहिए। क्षणायुषात भारत भूजयो, कुछ क्षणों का जीवन भारत में चाहिए। हम तो प्रभुपाद जी कहते हैं बड़े बड़े देवतागण आकांक्षी रहते हैं कि हम भारत में जन्म लें। तो क्यों कहते हैं? अतिशय इंद्रिय उत्सवात, क्योंकि स्वर्गलोक में क्या है, अतिशय इंद्र तृप्ति चलती है, इसलिए उस अतिशय इंद्र तृप्ति के परिवेश में भगवान का स्मरण संभव नहीं। तो इसलिए यहां पर यह वर्णन आया है। आगे शिशुमार और अनंत का वर्णन, और तत्पश्चात 26वां जो अध्याय है वो नरक लोकों का वर्णन, 29 अलग अलग प्रकार के नरकों का वर्णन है, और इसकी विस्तृत जानकारी आप पालोगे 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में, और किस प्रकार ऐसे ऐसे नरक हैं जहां पर खाल उधेड़ा जाता है, उबाला जाता है, हर प्रकार के बड़े बड़े कुत्ते आकर काट के जाते हैं, वज्र कंटक शलमली ये वो क्या क्या भयंकर नाम है। तो ये 26वां अध्याय क्यों दिया गया है? ये बतलाने के लिए कि जो भी कुकर्म हम करेंगे, इंद्र तृप्ति विषय भोग करेंगे, उसका भयंकर विषम दुष्परिणाम होगा, लेकिन इस दुष्परिणाम के विषय में जानकारी प्राप्त करके भी लोग सुधरते नहीं। प्रभुपाद जी लंदन में थे तो रिपोर्टर उनको पूछने लगा, सर आपके पंथ में हमने सुना है स्वर्ग और नरक का भी वर्णन है, क्या आप नरक में विश्वास करते हो? प्रभुपाद ने कहा लंदन क्या है, नरक ही तो है, वो भी तो नरक है। तो प्रभुपाद जी ने उनको कह दिया कि ये नरक में जो गतिविधियां हो रही है यहां पर वही हो रही है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी के एक शिष्य न्यू वृंदावन छोड़कर चले गए, और उस समय उनका भाई न्यू वृंदावन में था, तभी ये 5th कैंटो का उस समय एक एक करके कैंटो निकलता था, ये कैंटो निकला तो उन्होंने देखा कि अरे ये भयंकर है ये वाला चैप्टर, तो जाकर घर पर अपने भाई को दे दिया कि यार तू मंदिर छोड़ के चला गया, इस्कॉन छोड़ के चला गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के इंद्र तृप्ति में ले, ये थोड़ा चैप्टर पढ़ गया, और रात भर पढ़ता रहा, अगले दिन सुबह आ गया, बोरिया बिस्तर लेकर मंदिर में ज्वाइन हो गया। वो बोला, अरे गलती किया, कहीं वापस ऐसी इंद्र तृप्ति में करूंगा तो क्या होगा। तो इसलिए ये अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। 16वां से लेकर 26वां, ये 10 अध्याय ये हमको इस बात का परिचय दे रहा है कि जीव के हृदय में भोग करने के कितने वैरायटीज ऑफ डिजायर हैं, कितनी विविधता है भोग इच्छा में। भोग इच्छा में कितनी भी विविधता हो, लेकिन परिणाम में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इसमें वैरायटी नहीं है, ये कांस्टेंट है। इसलिए माम उपेत्य पुनर्जन्म, इसलिए आप मुझे प्राप्त करो जिससे कि इन सभी विविधताओं को आपको प्राप्त करने की आवश्यकता न पड़े। तो ये 10 अध्याय के पीछे दो प्रमुख कारण है। एक, क्या आप अपने वैज्ञानिक बुद्धि को, तर्क शक्ति को अधिक महत्व देते हो या शास्त्र के वाणी को अधिक महत्व देते हो? अगर आपकी श्रद्धा शास्त्र में है तो फिर 5वें स्कंद के 26वें अध्याय के आगे पढ़ना चाहोगे। अगर चंद्रमा सूर्य से दूर है, सूर्य चंद्र से पृथ्वी के निकट है, और फिर भूगोल के इस प्रकार के मापदंड, ये वर्णन वो वर्णन जो आधुनिक वैज्ञानिकों के विपरीत तत्वज्ञान है, उसको पढ़कर अगर अपना माथा घूम गया और शास्त्र और वैष्णव और सुखदेव गोस्वामी इत्यादि प्रवक्ताओं से हमारी श्रद्धा उठ गई तो छठा स्कंद खोलेंगे नहीं, क्योंकि जिस क्षण व्यक्ति की श्रद्धा उठती है वो निकल चलता है। तो इसलिए ये जो है 5वें अध्याय का अंतिम भाग, ये एक द्वार है, हरिनाम में प्रवेश करने का द्वार, हरिनाम रूपी प्रासाद का प्रवेश द्वार है। इट इज द एंट्री डोर टू द पैलेस ऑफ द होली नेम, क्योंकि छठा स्कंद आरंभ होता है हरिनाम की महिमा से। और जो व्यक्ति शास्त्र में विश्वास न रखे, शास्त्र के इस तत्व ज्ञान पर विश्वास न रखे, वो छठा स्कंद पहले अध्याय तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए हरिनाम में श्रद्धा के लिए न्यूनतम योग्यता है शास्त्र के तत्व ज्ञान में विश्वास। और दूसरा, हमको ये दिखलाने कि चाहे कहीं पर भी जाओ, विविध प्रकार के भोग उपलब्ध हैं, लेकिन क्लेश जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समान रहेगा। तो इसलिए अब छठा स्कंद आरंभ होता है महाराज परीक्षित के हृदय का परिचय देते हुए। ये 5वें स्कंद और 6ठे स्कंद का कनेक्शन है। हाउ मे द ह्यूमैनिटी बी सेव्ड फ्रॉम एंटरिंग हेल, मानव समाज नरक में प्रवेश से कैसे बचाया जाए। आगे तो परीक्षित महाराज के मन में बड़ी वेदना हो रही है कि इतने जीव नरक में जाकर यातनाएं भुगतेंगे तो क्या होगा, उनको बचाने का कोई उपाय है कि नहीं। आगे तो कहते हैं कि हां भाई, कई प्रकार से प्रायश्चित किए जाते हैं कर्मानुसार, और कर्मानुसार जब व्यक्ति कोई करता है प्रायश्चित, तो वो तो वैसे ही जैसे हाथी ने स्नान किया, बाहर निकला और धूल डाल दिया। हां, कुंजर शौच, समस्या थी पाप, समाधान था प्रायश्चित, लेकिन कभी कभी प्रायश्चित पाप से भी ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो जाता है। ब्रिटिश सरकार के समय दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या थी, दिल्ली में बहुत सारे कोबरा सर्प बढ़ गए, तो ब्रिटिश सरकार ने दिमाग लगाया और पुरस्कार घोषित किया, जो मरा हुआ सांप लेके आएगा उसको 5 रुपया देंगे। उनको लगा बहुत सारे लोग सांप मार मार के लेके आएंगे, उल्टा हुआ, आसपास किसान लोग सांप का और जन्म देने के लिए सर्प का फार्म खोल दिए, तो कोबरा फार्म्स खुल गए चारों तरफ दिल्ली के, और फिर वो लोग ला ला कर दे रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार सोच रही थी अरे ये तो बढ़ रहा है लगता है, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी सोच के कि लोग मरा हुआ सर्प लेके आएंगे, लेकिन लोगों ने सोचा ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दिया चलो स्कीम कैंसिल, पैसा नहीं देंगे। तो किसान लोग क्रोधित हो गए, सारे सांप को दिल्ली में छोड़ दिया। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम तो सांप का था, लेकिन सॉल्यूशन ऐसा हुआ कि ओरिजिनल प्रॉब्लम से भी खतरनाक। तो इसको वास्तव में बोलते हैं कोबरा इफेक्ट। कोबरा इफेक्ट का अर्थ ही होता है वेयर द सॉल्यूशन इज वर्स देन द ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो इसलिए यहां पर वो कह रहे हैं आगे, वेणु गुलमम इवानला, ठीक है ज्ञान के मार्ग से हो सकता है कुछ हमारे पापों का प्रतिकार हो, लेकिन फिर भी उसका भी दुष्परिणाम होता है, क्योंकि इच्छा समाप्त नहीं होती, वो इच्छा की बीज बनी रहेगी तो इच्छा फिर अंकुरित हो जाएगी। तो इसलिए आगे कहते हैं इसके लिए मुख्य मार्ग है भक्ति। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंती कार्ष्णेय निहारमिव भास्करः। जब इस तरह की भक्ति करेंगे तो ये भक्ति वास्तव में सूर्य के प्रकाश की भांति घनघोर अंधकार के तम के बादलों को नष्ट करेगा, और तब हम वास्तविक भक्ति को समझ पाएंगे। और ये भक्ति करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? अगला, सकृन मन कृष्ण पदारविंदयो हो निवेशितं तद्गुण रागियैर इह नते यमं पाश भृतश्च तद्भटान स्वप्ने पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताः। कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने पाप कर्म किए हों, अगर अचानक कुछ क्षणों के लिए भी सकृत अगर मन में कृष्ण के पादार बिंदयो हो चरण कमलों को हम धारण करें, निवेशिताम उसमें प्रवेश करें, तद गुण राग यैर इह कृष्ण के गुण इत्यादि, ऐसे व्यक्ति के मन में अगर कृष्ण परोक्ष रूप से भी लेश मात्र प्रवेश करें, नते यमम पाश भटस चतत भटान, न यमपाश न यमदूतों का उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। स्वप्नेपि पश्यन्ति, वो स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देखेगा, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में जो पिछले पांचवें अध्याय के अंतिम पड़ाव में 10 अध्यायों में आपको 14 लोकों का पूरा एक टूर दिया गया है, तो ये 14 लोकों के किसी कोने में भी आप जाओ तो इतनी सिक्योरिटी नहीं है जितना आप यही पृथ्वी पर बैठे बैठे मन में कृष्ण का नाम और चेतन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसलिए न तथा ही अघवान राजन पूयेत तपा आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया, ये कहा गया है सद्री चीनो ही अयम लोके पंथा क्षेमा अकुटो भय सुशीला साधवो यत्र नारायण परायण। सबसे श्रेष्ठ सुगम मार्ग है भक्ति का जब नारायण परायण हो जाते हैं। और ये नारायण परायण होने का मार्ग क्या है? यथा कृष्णार्पित प्राण, ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिन्होंने कृष्ण के चरण कमलों में अपना प्राण समर्पित किया हो। तत्पुरुष, और ऐसे भक्त का आश्रय ग्रहण करो। तद निषेवया, इस प्रकार हम भक्ति आरंभ करते हैं। तो अजामिल का प्रसंग वर्णन करते हैं कि अजामिल जी अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते थे, उनका नाम नारायण रखा था, वैश्या के साथ विवाह किया था और अचानक मृत्यु का क्षण आ गया और यमदूतों को देखकर भयभीत होकर उच्च स्वर में अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण नारायण। जैसे ही अपने पुत्र को पुकारा, अचानक वहां पर विष्णुदूत चार वहां प्रकट हो गए और विष्णुदूत प्रकट होकर दोनों में बहस छिड़ गई और तब ये जानना चाह रहे थे कि अजामिल ने तो जीवन पर्यंत इतने सारे पाप किए थे, एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्यय आसीत स एव न चिरात ईश संगात विलियते। जिस व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन में इतना पाप किया हो उसको यमराज के दरबार में आके दंडित होना तो न्याय है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए कि शास्त्र में प्रायश्चित के विविध मार्ग विस्तृत रूप से वर्णित किए गए हैं, लेकिन केवल भक्ति शास्त्रों में ही हरिनाम की महिमा का वर्णन है। और क्योंकि अजामिल ने मृत्यु के क्षण भगवान का नाम लिया तो विष्णुदूत तुरंत उसको देखकर कहते हैं, हाँ आगे के श्लोक में वर्णन आ रहा है, यमदूत कह रहे हैं, अयम ही श्रुति संपन्न शीलवृत्त गुणालय मृदुरदांत सत्यवान मंत्रविद शुचि गुरु अतिथि वृद्धानाम अनहंकृत शुश्रूषः, कि ये अजामिल के अंदर सारे गुण थे, सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण था, श्रुति संपन्न चार वेदों में विद्वान थे, शील थे, मृदुभाषी थे, गुरु की सेवा में लगे थे, पत्नी और बच्चों की भली भांति सेवा करते थे, तो वास्तव में हर प्रकार के गुणों से सुसज्जित थे, सत्वगुण पे स्थित थे। लेकिन यहां भागवत के इस अध्याय में परिचय आया है कि जैसे भरत महाराज महाभागवत के स्तर में रहकर भी स्थिर नहीं थे, तो सत्व गुण में स्थित होना भी स्थिरता गारंटी नहीं करता, तो हिलने के लिए व्यक्ति कहीं भी हिल सकता है। और फिर जब उसने देखा कि एक शूद्र एक महिला को आलिंगन कर रहा है वन के बीचों बीच, स्तंभयम आत्मन आत्मानम यावत सत्वम यथाश्रुतम न शशाक समाधातु मनोवदन वेतितम, तो उसने शास्त्र के जितने भी श्लोक सुने थे उनको प्रयोग करने का प्रयास किया और अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं कर पाए, उनके वशीभूत आ गए और उसी वैश्या को घर पे ले आए, पत्नी को भगा दिया और उस वैश्या के साथ जीवन व्यापन करने लगे। इसलिए यहां वर्णन आया है कि अजामिल का पतन हुआ ये यमदूत जानते थे, लेकिन मृत्यु के क्षण जो उन्होंने नाम लिया उसको विष्णुदूत कहते हैं, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभनम हेलनम वा वैकुंठ नाम ग्रहणन अशेष अगहरम विदु। अरे वैकुंठ से नाम आया है, कोई परोक्ष रूप से भी वो नाम ले, संकेत करे, हंसते हुए बोले, नाम कहीं भी आए वो शुद्ध करेगा। एक इस्कॉन के भक्त सन्यासी पहले गृहस्थ थे, हॉलैंड में रहते थे अपनी पत्नी के साथ, एम्स्टरडैम में उनकी पत्नी कुत्ता पाल के रखी थी और एक बहुत बड़े स्कॉलर जिड्डू कृष्णमूर्ति के नाम पर कुत्ते का नाम रख दिया था कृष्णमूर्ति, और कुत्ते को शॉर्ट में बुलाती थी कृष्णा। तो कुत्ता एक दिन गायब हो गया तो पत्नी ने पति को कहा जाके कृष्णा को ले आ। पति रात के समय निकला और वो अपने स्ट्रीट पे निकला, जोर से चिल्लाते हुए कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और उस समय इस्कॉन का हरिनाम संकीर्तन वहीं से जा रहा था। भक्त लोग इसको देख के बोले, अरे कितना बड़ा भक्त है, रात के अंधकार में अकेले एकांत में कृष्णा को पुकार रहा है, तो गोस्वामी जैसा है। उसके पास आए, बोले कृष्णा को ढूंढ रहा है, बोले हाँ कृष्णा को पकड़ के लेके चले उसको मंदिर। बाद में मालूम पड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग था, लेकिन तब तक संपर्क हो गया, जुड़ गए वो, और आज के दिन बड़े सन्यासी हैं। तो इसलिए कृष्ण का नाम संकेत से परिहास से कैसे भी जुड़े, कृष्ण टेढ़े हैं सीधे नहीं। कृष्ण कैसे खड़े रहते हैं, कृष्ण सीधे खड़े रहते हैं क्या, नहीं टेढ़े, तो हुक की तरह हैं। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं हुक की तरह कृष्ण कान के अंदर से घुसते हैं और आपके दिल को हु करके पकड़ के खींच लेंगे, फिर निकलेंगे नहीं। इसलिए जो गोपी गीत में कहते हैं क्या, तव कथा मृतम, जो मेरी कथा सुनेगा मरेगा। क्यों? वो भौतिक इंद्र तृप्ति समाप्त हो जाएगी उसकी। इसलिए कथा सुनने वालों सावधान, जीवन में क्रांति मचेगी। जो कुछ भी अभी आपको अच्छा लगता है इंद्र तृप्ति कल झटका देगा। हाँ, लोगों ने बताया है, कथा कीर्तन करने के बाद, नाम जप करने के बाद पुराना खाया हुआ आइटम अंदर नहीं घुसता, जाता भी है तो पचता नहीं, तो इसलिए पूरा जीवन बदल जाएगा। बैठने के पहले सावधान रहना, अभी तो 2 दिन बाद बता रहे अपन सूचना पहले देनी चाहिए थी। तो इसलिए कहते चक्रवर्ती पाता वह कथा मृतम, जो मेरी कथा सुनेगा, कृष्ण की कथा सुनेगा, गोपिया कहती वो मरेगा, अर्थात उसकी भौतिक इच्छाएं, भौतिक जीवन समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए आगे अजामिल्स लैमेंटेशन, और अजामिल से सोचते हैं कि सबसे पहले रिग्रेट कि मैं बहुत पश्चाताप करता हूं, फिर दूसरा जानकारी हो जाती है उनको कि मैंने क्या किया, अवेयरनेस। अथ तेक गत सिद्ध चत्वारो चारु दर्शना व्यामोचय नियमान बद्धवा पाशेर अधोभुव, कि वास्तव में अभी तक नरक में जाता था, अगर मैं वैष्णव सत्संग में आकर जप नहीं करता तो मैं नरक में जाता था। वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस। और तीसरा, जो भी हमें इस्कॉन में लाया उसके विषय में निरंतर चिंतन करना चाहिए। वी शुड फील ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना चाहिए। अगर वो नहीं होते तो हम लोग वैष्णव सत्संग में कैसे आते हैं। अतापि में अथ ते क्व गत सिद्ध चत्वार चारु दर्शन, अथापि में दुर्भगस्य विभूतोत्तम दर्शने, तो इसलिए वो कहाँ गए विष्णुदूत जिन्होंने मेरा उद्धार किया। और चौथा, अजामिल अप्रिशिएट्स द मर्सी विच ही रिसीव्ड फ्रॉम द विष्णुदूतास। हाँ, क्व चाहम कितव पाप ब्रह्मग्न निरपत्रप क्वच नारायणम मेति भगवन नाम मंगलम, भगवान का मंगलकारी नाम इतना श्रेष्ठ है, इतना महान है कि कैसे हम सभी के जीवन में परिवर्तन लाता है। ये हरिनाम की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है, कितनी महान है, हम सभी के जीवन में तत्क्षण परिवर्तन लाने में सक्षम है। तो इस प्रकार आगे अजामिल का उद्धार होता है। अजामिल को एक और समय, एक और अवसर दिया जाता है, हरिद्वार में जाकर भगवान नाम लेकर शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध होकर वो भगवत धाम की ओर जाने लगते हैं। और तत्पश्चात यहां पर यमदूत जब यमराज के पास आते हैं, यमराज के पास आकर चुनौती देने लगते हैं, अरे यमराज ये क्या किया, हमको लगा आप महान हो, मालूम पड़ा आपसे भी शक्तिशाली कोई है। हाँ, नामोच्चारण महात्म्यम हरेर पुत्र का, तो इस तरह वो कहते हैं भैया मैं बहुत प्रसन्न हूं। यमराज कहते हैं कि यमदूतों, इतने वर्षों से आपका संग कर रहा हूं, पहली बार तुम लोगों ने भगवान का नाम लिया, क्योंकि वो लोग आके नारायण 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 बार बार बोल रहे थे। यमराज भी जानबूझकर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहे थे, और क्या बोला, और क्या बोला, अरे ये नारायण नारायण, ये नारायण नारायण। यमराज बोले चलो, गए गुजरे लोग भी ले रहे हैं भगवान का नाम। तो यमदूत जब प्रश्न पूछते हैं तो यमराज, जो कि पूरे ब्रह्मांड के न्याय के अंतिम निर्णयात्मक स्तंभ है, वो उत्तर दे रहे हैं यहां पर, नो ज्यूरिसडिक्शन ओवर द डिवोटीज। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवो समदृशो भगवत प्रपन्ना। तानोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान्, नैषां वयं न च वय प्रभवाम दण्डे। तो कह रहे हैं यमराज जी यमदूतों को कि देखो बेटा, आप कभी भी कहीं पर भी जाओ, लेकिन जिसके माथे पे तिलक है, गले में कंठी माला है, हाथ में बीड बैग है, उसके पास कभी मत जाना। क्यों? क्योंकि उनके चारों तरफ स्पेशल कमांडो घूम रहे हैं। कौन है वो? भगवान विष्णु अपने हाथ में गदा लेकर उनको चारों तरफ संरक्षण व्यक्तिगत रूप से दे रहे। तान न उपसीदत हरेर गदयाभिगुप्तान, गदा लेके उनका संरक्षण कर रहे हैं। नैषाम वयम, उनको हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न च वय, समय उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभावाम दंडे, कोई उनको प्रभाव नहीं कर सकता, दंड नहीं दे सकता। तो यमराज कहते किन को लेके आओ? जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमति यत् शिर एकदापि, तानान यद्वमसतो अकृत विष्णुकृत्यान्। तो यमराज जी यहां पर वर्णन कर रहे हैं, लेके आइए किनको? जिनके जिह्वा में कभी हरिनाम नहीं आया, जिन्होंने मन में कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, जो कृष्ण के सामने कभी नहीं झुके, उनको ले आइए। तो इसलिए राधानाथ महाराज ने भक्तिवेदांत अस्पताल के डॉक्टर्स को कहा, कोई भी पेशेंट आए हमेशा प्रसाद देना। तो उन्होंने पूछा महाराज को, प्रसाद पाकर क्या होगा? बोले, जो भी प्रसाद लेगा चाहे कुछ भी करे, भविष्य में उसको मानव जीवन मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उस समय ही कह दिया, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते रहो। महाप्रभु ने देखा जब बालागंडी में प्रसाद वितरण हो रहा था, हाँ, महाप्रभु ने गोविंद को देखकर कहा कि आप सब लोगों को प्रसाद वितरित कर रहे हो, हरि बोल बोली तारे उपदेश करी। तो देखिए, प्रसाद पाइए और हरि नाम लीजिए, दोनों लीजिए, क्योंकि भूख तो मिटेगी लेकिन फिर भूख लगेगी। लेकिन वास्तव में वास्तविक उपाय क्या है? जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले आर दुख नाय, कृष्ण के दासत्व का हमको अभी पूरा अभ्यास होना चाहिए। तो इसलिए सारे मंदिरों में अन्न क्षेत्र चलते हैं, प्रसादम वितरण होता है। तो राधानाथ महाराज ने यहां आदेश किया है कि दिसंबर के महीने से यहां पर भी निःशुल्क प्रसाद वितरण आरंभ हो, और सब आसपास के गांव वाले या जो भी आए, तो दिसंबर 15 तारीख को राधानाथ महाराज के हाथों यहां पर गोवर्धन अन्न क्षेत्र का उद्घाटन किया जाएगा। तो जैसे मैंने कल बताया वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का स्टैटिस्टिक्स, तो वास्तव में आज के तारीख में शाकाहारी होना ही एक बहुत बड़ा माइनॉरिटी है, प्रसाद तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए यहां पर यमराज जो कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। तो इसके अंत में इत्थम सुभृत्य गदितम भगवन महित्म्यम संस्मृत्य किंकर धियो यम किंकरास्थे। तो यमराज जी की बातों को सुनकर कहा गया है कि यमदूत कहते हैं, या यमदूतों को यमराज जी कहते हैं कि बेटा वैष्णवों के पास कभी मत जाना। तो उस दिन से यमदूत बहुत घबराते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, दुनिया यमदूतों से घबराती है और यमदूत वैष्णव भक्तों से घबराते हैं। इसीलिए ये जो अध्याय है इसमें चार प्रमुख शिक्षा अंत में देते हैं। म्रियमाणो हरेर्नाम गृण पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन। अजामिल ने मरते दम तक इतना उच्च स्वर में तीव्रता से हरिनाम नहीं लिया जैसे मृत्यु के समय। तो जीवन भर आप नियमित रूप से नाम लोगे तो कितना लाभ मिलेगा। घृणा पुत्रोपचारितम, दूसरा अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा तो भी लाभ मिला, आप डायरेक्ट भगवान को बुलाओगे तो कितना लाभ मिलेगा। अजामिलोप्यगत धाम, मृत्यु तक अजामिल पाप कर रहा था, आप चार नियम पालन करने लगोगे तो कितना फायदा मिलेगा। और किम पुनर्श्रद्धयाग्रहण, अजामिल ने कभी होली नेम सेमिनार अटेंड नहीं किया, उसको कुछ पता नहीं था ये श्रद्धा ये वो हरिनाम क्या है, हरिनाम में कितनी श्रद्धा रखनी चाहिए, कुछ नहीं पता था। और अगर हम लोग नियमित रूप से हरिनाम में श्रद्धा उत्पन्न करेंगे तो कितना अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो ये कैमोतिक न्याय के माध्यम से ये अजामिल का प्रसंग हमको बताया गया है। ये इसलिए जिससे कि हम और तीव्रता से भगवान का नाम ले सकें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक कॉलेज को स्टूडेंट को मैं पूछा, तुम्हारे इतने शास्त्र में महाजन में से कौन है सबसे बेस्ट महाजन, वो बोलते हैं अजामिल मेरा फेवरेट है। मैंने कहा और कोई मिला नहीं क्या, अजामिल क्यों, वो बोलते हैं अजामिल मजा भी किया भगवत धाम भी गए। मैंने कहा वो उसको बाय चांस मिल गया चांस, तुमको नहीं मिलेगा सेकंड चांस, तो सावधान रहो। अजामिल एक उदाहरण है हम लोगों के लिए कि हम लोग हरिनाम को तीव्रता से लें, ये इंस्पायर करने के लिए नहीं कि आप भी वैसे कर सकते हो, लास्ट में देखा जाएगा, अभी मत देखो। तो आगे परीक्षित महाराज विसर्ग के बारे में पूछते हैं, तो दक्ष प्रजापति और हंस गुह्य श्लोकों का वर्णन आता है। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र हरियश्वस नारायण सर में जाते हैं, नारद मुनि को भेंट करते हैं, नारद मुनि उनको गोपनीय तत्व ज्ञान बताकर फंसा देते हैं और कहते हैं बेटा वैराग्य धारण करना ही श्रेष्ठ है। उनके बातों को मस्तक पर धारण कर वो सभी चले जाते हैं हिमालय। और तत्पश्चात ये समाचार जब मिलता है दक्ष प्रजापति को, उसको बड़ा क्रोध आता है, फिर 1,000 पुत्रों को भेजते हैं शवलस्वस, उनको भी नारद मुनि केवल एक ही प्रश्न पूछते, बेटा छोटे भाई का कर्तव्य होता है बड़े भाई का पालन करना है कि नहीं, बोलते हाँ। आपको पता है बड़े भाई कहाँ गए, बोलते नहीं हिमालय गए, छोटे भाई बोलते हम भी जाएंगे। नारद मुनि कहा आपने कहा, मैंने नहीं, जाओ। तो पहुंच गए वो लोग भी। फिर नारद मुनि समाचार लेके आते हैं दक्ष प्रजापति के पास, दक्ष प्रजापति पूछते हैं व्हाट इज द न्यूज, तो नारद मुनि बोलते हैं स्कोर है 11,000। बोले क्या सब गए ऊपर, तो इसको सुनकर दक्ष प्रजापति बड़े क्रोधित होते हैं और नारद मुनि को अभिश्राप देने लगते हैं। तो इसलिए यहां देखा गया है कि जो गाली देने की प्रवृत्ति, आलोचना करने की प्रवृत्ति दक्ष प्रजापति की शिवजी के तब से चल रही थी, वो पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ था और इसलिए वो क्रोध करने का भाव अभी भी था और फिर वो अंकुर फूट गया। और यहां वापस नानु भूया न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णताम निर्विद्यते स्वयं तस्मात् न तथा भिन्नधि परई। वो कहते हैं कि भैया आपने मेरे पुत्रों को साधु बना दिया, लेकिन जब तक वो लोग पूरे गृहस्थी में रहकर गृहस्थी के ताप को नहीं अनुभव करेंगे, इंद्र तृप्ति से मार नहीं खाएंगे, तब तक ये तो ऐसा हुआ कि जबरदस्ती आपने किसी को बना दिया। क्योंकि जब व्यक्ति वास्तव में कटता है तो जानता है कि छुरी कितना तेज है। न विद्यते स्वयं तस्मा न तथा भिन्न धी परई, आपने जबरदस्ती भिन्न धी परई इनका ब्रेन वॉश कर दिया। तो संस्कृत में ब्रेन वॉश को नाम दिया है भिन्न धी, टू चेंज समबडीज ब्रेन। तो इस्कॉन के ऊपर ब्रेन वॉशिंग केस लगा न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद के पास केस आया तो प्रभुपाद ने प्रेसिडेंट को कहा हम लॉयर वॉयर नहीं लगाएंगे, तुम ही केस लड़ो। वो डिवोटी बोला यार मैं तो कॉलेज ड्रॉप आउट हूं। प्रभुपाद ने कहा तो क्या हुआ, मेरे बुक्स लेके जाओ और बुक्स को सजा दो कोर्ट में और भागवतम के प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से सुनाओ, एक घंटा लेक्चर दो, दूसरा दिन दूसरे श्लोक पे दो, तीसरा दिन तीसरे श्लोक, कन्वर्ट कोर्ट केस इनटू भागवतम क्लास, प्रभुपाद का आदेश हो गया। तो भक्त लोग बोले चलो प्रभुपाद बोल रहे करते, तो खड़ा हो गया कोर्ट में सीधा लेक्चर देने लगा। जज भी परेशान, यार ये क्या बोल रहा है। दूसरा दिन एक और लेक्चर, तीसरा दिन एक और लेक्चर, एक सप्ताह तक लेक्चर ही चल रहा है। और जज सोचने लगा कि यार ये कब तक चलेगा। तो उसने भक्त को पूछ लिया आपके पास एविडेंस कितना है, भक्त बोला सर अभी तो 7 ही श्लोक हुआ है 18,000 है। जज घबरा गया, उसने अपने मित्र को फोन मारा, बोला यार ये लोग कौन सा बुक से बोल रहे हैं, भक्तिवेदांत स्वामी का बुक से, क्या है आपका ख्याल? वो हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल का प्रोफेसर था, बोलता है स्वामी प्रभुपाद के बुक्स बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, ये हरे कृष्ण आंदोलन ऑथेंटिक है। तो तुरंत उसने अगले दिन बोला मैं सब एविडेंस सुन के समझ गया हूं और मैं निर्णय दे रहा हूं कि हरे कृष्णा मूवमेंट एंड इस्कॉन इज अ बोनाफाइड रिलीजियन। और ये पूरा जो है कोर्ट वर्डिक्ट आ गया, सारे न्यूज़पेपर में छप गए, प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए सुन के। तो इसलिए कौन व्यक्ति जाकर किसी को बुक्स दिया, कैसे उसके ऊपर प्रभाव पड़ा और कहां पर इस दूसरे केस में वो काम आया है कि नहीं। तो हर व्यक्ति का अपना एक योगदान रहता है। और आगे हम देखते हैं कि दक्ष प्रजापति नारद मुनि को क्रिटिसाइज करते हैं और फिर दक्ष के पुत्रियों का वर्णन आता है और तत्पश्चात हम देखते हैं कि कश्यप और अदिति के ही पुत्रों की श्रेणी में अब आगे। अभी तक हमने जो अलग अलग चर्चाएं की तो कश्यप और अदिति के सभी पुत्रों का वर्णन आ रहा है और तब यहां अंत में ये वर्णन आएगा कि विश्वरूप का क्या हुआ। तो इंद्रदेव बृहस्पति को अपराध करते हैं, बृहस्पति प्रवेश करते हैं लेकिन इंद्रदेव बृहस्पति की उपेक्षा कर जाते हैं। इंद्र अपने अय्याशी में इतने खोए रहते हैं कि कई बार देखते नहीं कौन आया कौन गया। तो बृहस्पति को लगा कि ये मेरा अपमान कर दिए, तो उन्होंने अपना आशीर्वाद खींच लिया। तो आशीर्वाद खींच लिया तो बृहस्पति के अपमान के कारण इंद्र की शक्ति चली गई, असुर लोग हावी हो गए। उस समय ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा विश्वरूप को गुरु के रूप में स्वीकार करो। आगे विश्वरूप को गुरु के रूप में स्वीकार किया लेकिन विश्वरूप भी क्या करता था कि एक श्वास से देवताओं के लिए आहुति डालता था लेकिन वो अपनी माँ की ओर से असुरों से रिलेटेड था तो असुरों के लिए भी आहुति डाल रहा था। तो इंद्र सावधानी से सुना तो मालूम पड़ा रही तो छल कर रहा है, तो इंद्र को क्रोध आ गया, सीधा विश्वरूप का सर काट डाला। तो पहले तो मानसिक अपराध किया था बृहस्पति के प्रति, अभी सीधा तलवार से मार डाला। तो उस समय विश्वरूप के पिता त्वष्ट बड़े क्रोधित होकर एक यज्ञ किए और तब जाकर उस यज्ञ बोलते समय, यज्ञ के मंत्र बोलते समय एक उच्चारण गलत कर दिया, इंद्र शत्रोः विवर्धस्व कहा, तो वो इंद्र का शत्रु के बदले वो हो गया दैट पर्सन फॉर हुम इंद्र विल बी एन एनिमी, उल्टा मीनिंग हो गया। तो उससे निकले वृत्रासुर और वृत्रासुर आकर पूरे शक्ति के साथ आक्रमण करने लगे और वृत्रासुर ने सारे देवताओं को दमन किया। उसको देखकर देवतागण भगवान विष्णु के पास फिर गए, भगवान ने कहा जाओ दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनके तेजस्वी अस्थियों से अस्त्र बनाओ। और तब जाकर वो गए। भागवत वर्णन कर रहा है कि जो सत्ता शक्ति ऐश्वर्य के पीछे पागल है उसके जीवन में निरंतर अशांति होगी और वो व्यक्ति इतना निर्लज होगा कि वो अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति के जीवन को भी बलिदान करने के लिए तैयार रहेगा। तो केवल अपने पोजीशन मेंटेन करने के लिए सारे देवता जाते हैं दधीचि ऋषि के पास, कहते हैं अपना शरीर दे दीजिए, अस्थियां दे दीजिए वज्र के लिए। और दधीचि ऋषि भी बड़े प्रेम से कह देते हैं कि हाँ हम लोगों का शरीर भी क्या, दूसरों के एक काम आए तो अच्छा है। पारक के क्षण भंगुर ही वास्तव में क्षण भंगुर है और इसलिए जब परोपकार में प्रयोग करे वही अच्छा। तो अपना शरीर त्याग देते हैं, उनके अस्त्रों से बड़ा सुंदर वज्र बनाकर इंद्र के हाथ में आ जाता है। लेकिन इंद्र जैसे आक्रमण करने लगते हैं वृत्रासुर के एक आक्रमण से वो वज्र नीचे गिर जाता है। जैसे वज्र गिर गया इंद्र आशा खो बैठते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है, हमारे जीवन के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र क्या, वज्र का है, धन का है, सत्ता का है, शक्ति का है, कर्मों का है, नैतिकता का है, ऐश्वर्य का है। हमारे जीवन में युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सबसे शक्तिशाली अस्त्र है आशा। और यदि किसी के हृदय में आशा है तो विजय की आकांक्षा है। अगर वो निराश हो गया, हतोत्साहित हो गया, आशा खो बैठा, तो वज्र बगल में पड़े रहने पर भी वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर वज्र नीचे गिरा था, इंद्र निराश हो गए, लेकिन वृत्रासुर इंद्र को देख के कहते, अरे मूर्ख, भगवान के आदेशानुसार वो वज्र बना है, भगवान अच्युत है, उनकी इच्छा अच्युत है, अगर भगवान ने आदेश किया है तुम्हारी विजय अवश्य होगी, उठाओ उसको, देख क्या रहे हो। तो प्रतिद्वंदी है, विरोधी है, वो उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, लेक्चर उनको दे रहे हैं। तो ये भागवत में वर्णन आया है कि भक्ति अहेतु की है, अप्रतिहत है, किसी असुर के हृदय में भी भक्ति उत्पन्न हो सकती है। तो ये ना सोचें किसी ने तिलक लगा लिया, भक्त का वेश धारण कर लिया, भक्ति उसी के हृदय में होगी। कोई हो सकता है पैंट शर्ट पहन के, कोई बिजनेसमैन होगा, कहीं कोई कुछ होगा, कोई राजनीतिक हो गया, जो भी होगा, रामानंद राय पॉलिटिशियन थे, रूप गोस्वामी पॉलिटिशियन थे, सनातन गोस्वामी पॉलिटिशियन थे, महाप्रभु के टॉप तीन चार लोग प्रताप रुद्र सब पॉलिटिशियन थे। हाँ, रामानंद राय आचे गोदावरी तीरे अधिकाई हुए थे विद्यानगरे, क्षुद्र शूद्र विषय यानी उपेक्षा न करिबे, हमारा वचने तारे अवश्य मिलिबे, अलौकिक वाक्य चेष्टा तारे न बुझिए, अधिकारी हो इनते उन इनको जाके मिलिए आप रामानंद राय को। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में वैष्णव भक्त हैं, दिखने में गवर्नर लगते। तो बाहरी रूप से किसी को जज मत कीजिए। अलौकिक वाक्य चेष्टा तारे न बुझिया, परिहास करिया छेन वैष्णव बोलिया। हम वैष्णव बोल के उनको मजाक उड़ाते थे, लेकिन वास्तव में महान भक्त है वो। इसलिए वृत्रासुर यहां पर दिखने में असुर लग रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में भगवान की भक्ति पनप रही है। तो प्रथम नौ स्कंद में, दशम स्कंद में ब्रज भक्ति से पहले सबसे शक्तिशाली प्रार्थना ये चार प्रार्थना, ये इसको कहा गया है चतुश्लोकी भागवत का। तो सारे प्रार्थनाओं में सबसे शक्तिशाली प्रार्थनाएं वृत्रासुर की ये चार प्रार्थनाएं हैं। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदास भवितास्मि भूय मनस्मरेताशु गुणे पतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सर्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसात्वा विरह्यकांक्षे अजातपक्ष इव मातरं खगा स्तन्यं यथावत् सरता क्षुधार्ता प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णा मनो अरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम् ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम् संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माययात्मज दारगेहेषु आसक्त चित्तस्य ननाथ भूया। तो प्रथम श्लोक में वो वर्णन कर रहे हैं कि मैं आपका दासानुदास बनना चाहता हूं। दूसरे श्लोक के चर्चा का विषय है कि मैं इस 14 लोक में कोई भी सिद्धि या कोई भी पद नहीं चाहता, केवल आपके चरण कमलों की सेवा ही चाहता हूं। जैसे एक नवजात पक्षी अपनी माता के घोंसले लौटने की प्रतीक्षा करता है। ये श्लोक सुनाकर वृत्रासुर को बुरा लगा कि अरे ये कैसे मैंने कोई भौतिक वस्तु मांग ली। फिर कहा स्तन्यम्यता वत्सरथ, जैसे गोवत्स अपने माता का, तो मां के बाहर का कोई वस्तु लेकर मां आती है, वो कहते नहीं मां के अंदर का वस्तु मैं कामना करूंगा, क्या दूध। फिर कहते नहीं ये भी ठीक नहीं, प्रियम प्रियैव विशुतम विषन्ना, जैसे प्रिया प्रीतम के दीर्घकालीन अनुपस्थिति के पश्चात पुनः विरह आतुर से अब संभोग की कामना करती है, वैसे मैं कामना करता हूं। और फिर अंत में कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा है वैष्णवों का सत्संग, जनेशु सख्यम, ऐसे वैष्णवों के सत्संग मुझे प्रदान कीजिए। तब जाकर वृत्रासुर आगे इंद्र को ज्ञान देने के पश्चात उनको प्रेरित करके युद्ध करने लगते हैं और कहते हैं जीवन में सफलता का मूल केंद्र है प्रयास, भक्ति में प्रयास कीजिए, साधना कीजिए, सफलता और विफलता के कामना मत कीजिए, भगवान की इच्छा हुई तो सफल होंगे। और तब जाकर इंद्र को अलग अलग पाप कर्म का प्रभाव हुआ और उससे बचने के लिए उन्होंने तपस्याएं की। आगे भक्त कितना दुर्लभ है इसका वर्णन आया है छठे स्कंद में, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिश्वी। तो फिर प्रश्न उठता है कि इनका बैकग्राउंड क्या था। फिर चित्रकेतु की कथा आती है, चित्रकेतु को पुत्र मिला जिसका नाम हो गया हर्ष शोक। कोई भी वस्तु जिससे आप बहुत प्रेम करते हो इस जगत में, आपको लगेगा वो मिलेगा तो हर्ष होगा, लेकिन वो अंत में चलकर शोक का कारण बनेगा। तब जाकर चित्रकेतु महाराज ने पार्वती जी को अपराध किया और शिव जी को देखा कि शिव जी बैठे हैं पार्वती को गोद पे लेकर वैराग्य का भाषण दे रहे हैं, तो चित्रकेतु हंस पड़े, बोले ये क्या चल रहा है, सेमिनार का टॉपिक है रेनन्सिएशन और ये दृश्य तो कुछ और ही दिख रहा है। तो उसको देखकर पार्वती क्रोधित हो गई और उनका अभिश्राप दे दिया, लेकिन उन्होंने पार्वती जी के अभिश्राप को मस्तक पे लिया। और तब नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापर नरकेशु अपितुल्यात दर्शनत। शिवजी वैष्णव भक्तों को स्तुति करते हुए कहते हैं कि चाहे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो भक्ति कर सकता है। कभी कभी हम कहते हैं ये मेरा जॉब ठीक नहीं, ये मेरा बिजनेस ठीक नहीं, मेरा घर मंदिर से बहुत दूर है, मेरा घर मंदिर के बहुत पास है, मेरा घर अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रीनलैंड में है, एंटार्क्टिका में है, तो कई कई भौतिक कारणों को लेकर हम कहते हैं हम भक्ति नहीं कर सकते। तो वृत्रासुर और चित्रकेतु महाराज की कथा के माध्यम से हमको बताया गया है हर स्थिति में, हर शरीर में, हर प्रकार के परिवेश में भक्ति किया जा सकता है, डोंट गिव एक्सक्यूजेस। तो इसलिए ये मूल तत्व है इस संपूर्ण कथा का, है कि नहीं। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे थे कुंभ मेला में, प्रभुपाद ने पूछा व्हाई इज कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, किसी भक्त ने कहा बिकॉज गीता सेज, प्रभुपाद ने कहा गीता इज ओनली बुक, तो दूसरे भक्त ने कहा प्रभुपाद बिकॉज यू से, प्रभुपाद ने कहा आई एम ओल्ड मैन, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं। फिर भक्त ने कहा पता नहीं, फिर प्रभुपाद ने कहा क्योंकि जब आप हरिनाम लेते हो तब आप कृष्ण का अनुभव करते हो, आपके हृदय में शुद्धिकरण होता है, यू एक्सपीरियंस चेंज, सो यू नो कृष्णा इज सुप्रीम। 2 साल बाद प्रभुपाद फिलाडेल्फिया में थे मॉर्निंग वॉक पर, फिर उन्होंने ये प्रश्न किया व्हाई इज कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। एक भक्त जो मॉर्निंग वॉक में पहले थे वो इसमें थे, उनको लगा मुझे आता है, राइट आंसर दूंगा, प्रभुपाद शाबाशी देंगे। प्रभुपाद बिकॉज व्हेन यू चैंट यू एक्सपीरियंस कृष्णा, प्रभुपाद ने कहा नो बिकॉज गीता सेज। फिर प्रभुपाद ने कहा जो कुछ भी करो गुरु साधु और शास्त्र तीनों का समन्वय होना चाहिए। तो इसलिए चाहे ये फिलॉसफी हो, वो फिलॉसफी हो, कोई भी फिलॉसफी हो, इट शुड बी एज पर गुरु साधु एंड शास्त्र। आगे यहां पर दीति सोच रही है कि मेरे पुत्र नहीं, अब मुझे ऐसे पुत्र तैयार करने होंगे जो इंद्र का विध्वंस करे। और तत्पश्चात पुंसवन व्रत वो करती है और जब गर्भवती होती है तब इंद्र उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और इंद्र उसके गर्भ में प्रवेश करके उनके गर्भ को 49 भाग में काट देते हैं, और ये सभी जीवित होकर प्रार्थना करने लगते हैं, और ये हो गए मरुत, और इंद्र उनको छोड़ देते हैं। और तब जाके वर्णन आया है कि दिति, क्योंकि भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने व्रत किया, इसीलिए उनके भक्ति का परिणाम हुआ कि उनके बच्चों को संरक्षण मिला। और भले उनके मन में आसुरी भाव था, लेकिन भगवान की भक्ति करके व्रत करने का परिणाम यह हुआ कि उनके पुत्र देवता बने। इस प्रकार ये कहा गया है कि भगवत भक्ति जो करेगा उसको परिणाम अवश्य सकारात्मक प्राप्त होगा। तो अब छठे स्कंद के अंत में आया है कि इंद्र के द्वारा प्रेरित होकर विष्णु ने दिति के पुत्रों की हत्या की। अब सातवें अध्याय के आरंभ में परीक्षित महाराज पूछते हैं, भगवान क्या हैं, पार्शियल हैं कि इम्पार्शियल हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग आज दोपहर के सत्र में फिर चर्चा करेंगे 3:30 बजे से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।